बहुत अच्छा टॉपिक दिया। उसमें लिखा हुआ है कि ब्रह्मा बाबा के समान त्यागी तपस्वी हमारी दादी जी का जीवन कैसे था। ये तो बहुत बड़ा टॉपिक है, उसके ऊपर तो चर्चा करने में तो काफी समय चाहिए, एक डेढ़ घंटे के अंदर उसका व्यवहार या उसका विस्तार नहीं हो सकता है। परंतु मुझे जो बोलना है, जो कहना है, शारदा बहन ने मुझे कहला के भी भेजा कि हमने तो ये टॉपिक दिया है, परंतु आपको अपने तरीके से जो टॉपिक रखना हो तो आप रख सकते हैं। तो उसके लिए मैं, आप सबने कल की अव्यक्त मुरली तो सुनी होगी, परसों की मतलब ये कल रविवार की सुनी भी होगी, वो आप जानते हैं, वो 77 की है। और उस मुरली के अंत में, हम मुरली के अंत में बाद में मुलाकात हुई है, वो सब अलग है, परंतु उसके पहले जो है बाबा ने जो कहा हुआ है पार्टियों के साथ मुलाकात, उसमें एक महावाक्य, एक बहुत सुंदर पैराग्राफ है। क्या होता है कि हम बहुत सुनते हैं, सुनते बहुत है, जैसे कहते हैं ना कि खाना बहुत खाओ उसके आधार पर शक्ति नहीं बनती, वो कितना आपने डाइजेस्ट किया उसके आधार पर आपके शक्ति बनती है। उस प्रकार से हम सुनते तो बहुत है। मैं बाबा को हमेशा ही कहता था कि बाबा एक गलती हो गई है। भाई क्या हो गया, बाबा ने कहा। मैंने कहा बाबा आपने दो कान दिए हैं ना, तो एक कान से जो ज्ञान जाता है ना वो दूसरे कान से ही निकल जाता है। अंदर धारणा करने के लिए जो मार्जिन चाहिए, जो होना चाहिए, वो नहीं होता है, हकीकत है। और इसलिए मैं हमेशा ही कहता हूं कि मुरली सिर्फ सुनने की नहीं है, परंतु मुरली डाइजेस्ट करने की भी है और उसके आधार पर अपना जीवन बनाने की भी बात है। तो ये कल का जो महावाक्य का एक जो पार्टी के साथ किया है, कहा है, उसका मैं आपको एक पैराग्राफ पढ़ के सुनाता हूं। बाबा ने पार्टियों के साथ मुलाकात करते हुए कहा है, बाबा ने कहा हरे को स्वयं को देखना है। ये हमारी जीवन की एक क्या कहे विचित्रता है कि हम औरों को ही देखते हैं। बाबा ने एक अव्यक्त मुरली में कहा है बच्चों के दूर के चश्मे बहुत अच्छे हैं, परंतु नजदीक जो नियर जो होते हैं पढ़ने आदि के जो होते हैं वो उसमें बच्चों की आंखें जो है वो कमजोर है, इसलिए दूर औरों को देख सकते हैं परंतु अपने को नहीं देख सकते। इसलिए बाबा ने कल यही कहा कि हरेक को स्वयं को देखना है कि रेस में मैं किस नंबर पर जा रहा हूं। ये रेस है, आप जानते हैं दो प्रकार की रेस है यहाँ पर, दो ब्रह्मा कुमारी इसका भी, शिव बाबा का भी, ये ओलंपिक्स है। एक है हाई जंप और दूसरा है लॉन्ग जंप। हाई जंप में ऊंचे से ऊंचा कितना पद प्राप्त कर सकते हैं वो हाई जंप में आ सकता है, और लॉन्ग जंप कि सच्चू की आदि से आते हैं या बीच में आते हैं या अंत में आते हैं या त्रेता युग के शुरुआत में आते हैं, वो कैसे आते हैं। तो ये हाई जंप और लॉन्ग जंप की है बाबा की ओलंपिक्स है। उसके अंदर बाबा ने कहा है कि रेस में किस नंबर पर जा रहा हूं, रेस कर रहा हूं ये कोई बड़ी बात नहीं, लेकिन नंबर कौन सा है। ब्रह्मा कुमार ब्रह्मा कुमारी बन गए वो कोई बड़ी बात नहीं है, परंतु नंबर कौन सा है हमारा। चल तो रहे हैं, बाबा ने बहुत सुंदर बात कही हुई, और व्यंग जिसको कहते हैं, कटाक्ष जो कैसे कहता है बाबा ने, उसके लिए बहुत अच्छा आगे चल करके कहा हुआ है। चल तो रहे हैं लेकिन कहां चींटी की चाल, लेकिन कहां चींटी की चाल और कहां शेर की चाल, चाल चलन फर्क कितना है। चल तो सभी रहे, हम सब यहाँ जितने भी बैठे हैं वो सब चल रहे, कौन नहीं चल रहा है, सब चल रहे। इसलिए तो आप यहाँ इस भट्टी के अंदर आए, रिट्रीट के अंदर आए हैं। आप सबको मालूम है रिट्रीट शब्द का एक अर्थ ये भी है, मनन करना, चिंतन करना, विचार करना। जो भी सुना हुआ है, जैसे गाय जो है बैठ करके उगारती रहती है, उस प्रकार से चिंतन मनन करना, उसका ही नाम अंग्रेजी में रिट्रीट एक अक्षर एक शब्द ये भी है। तो चल तो सभी रहे हैं लेकिन चाल कौन सी है। शेर अर्थात राजा, तो राजा किसके भी अधीन नहीं होता है, ऐसे हो ये बाबा ने प्रश्न पूछा हुआ है, हरेक को प्रश्न पूछा हुआ है। अरे को इसका प्रश्न का उत्तर देना होगा। हाँ, राजा अधीन नहीं होते, ऐसे हो कि कभी किसी भी प्रकृति या माया के अधीन तो नहीं हो जाते हो, किसी भी प्रकृति और माया के अधीन तो नहीं हो जाते हो। अधीन न होना अर्थात शेर और शेरनी की चाल चलना, अधीन न होना अर्थात शेर और शेरनी की चाल चलना। और वीर बाबा ने व्यंग किया हुआ है, आप जानते हैं कभी कविताओं में कभी कभी लोग कई बातों में व्यंग करते हैं। बाबा भी बहुत सुंदर आदि कवि भी है, आदि दृष्टा भी है, बहुत कुछ है, तो बाबा ने एक व्यंग किया हुआ है। वो व्यंग हम क्योंकि हमारी चमड़ी इतनी मोटी हो गई है ना कि हमें इस व्यंग का कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है, बाबा बोलता रहता है उसमें क्या हो गया, तो इसलिए व्यंग कहा हुआ है बाबा ने, क्योंकि चीटी की चाल के साथ शेर की चाल के बारे में कंपेयर किया हुआ है। और चीटी की चाल के बारे में व्यंग करके कहा है बाबा ने, चीटी की चाल से तो बकरी की चाल अच्छी, चीटी की चाल से तो बकरी की चाल अच्छी। इस प्रकार से बाबा ने पार्टियों के साथ मुलाकात किया। तो इसी हिसाब से हम यहाँ पर बैठे हुए हैं, यहाँ आए हुए हैं, इसके बारे में चर्चा करेंगे। हाँ, कि हमारी चाल कौन सी है, हमारा व्यवहार कौन सा है, हमारा जीवन कैसे है, क्योंकि आपके तरह मैं भी गृहस्थ व्यवहार में ही रहने वाला हूँ और रहता भी हूँ और कारोबार भी करता हूँ। तो इसीलिए गृहस्थ व्यवहार में रहते हुए कैसे कारोबार करना चाहिए उसके बारे में थोड़ी हम चर्चा कर रहे हैं। मैं समझता हूँ एक घंटे तक, साढ़े छह तक हम इसके बाद चर्चा करेंगे, और फिर आधे घंटा जो साढ़े छह से सात जो है आपके कोई प्रश्न होंगे तो उस प्रश्नों के बारे में भी चर्चा करेंगे। तो ये गृहस्थ व्यवहार के बारे में कैसा जीवन हमारा होना चाहिए, बात 67 की है। 67 में हम लोगों ने एक मोटर कार बुक किया था, बॉम्बे में उसका ब्लैक चलता था और दो दो साल तीन तीन साल के बाद मिलती थी, कलकत्ते से फौरन मिल जाती थी, तो इसके लिए हमने कलकत्ते में बुक कराई थी। और कलकत्ते से लेकर के कानपुर, दिल्ली, आबू और बॉम्बे, इस प्रकार का टूर का प्रोग्राम बनाया था। तो मैं यहाँ आया और बाबा से पूछा कि बाबा हमने ये टूर का प्रोग्राम बनाया हुआ है तो इस टूर के अंदर तो कई सेंटरों पर जाना होगा, तो इसीलिए कई सेंटरों पर जाना होगा तो उसके अंदर आपका कोई संदेश हो तो मुझे बताओ। तो बाबा ने कहा कि बच्चा तुझे तो बाबा ने गृहस्थ जीवन में सैंपल के रूप में रखा हुआ है तो तुम ये बात कह सकता है और हमारी बच्चियां जो है, हमारी बेटियां जो है वो नहीं कह सकती है, क्योंकि वो कहती है ना तो भाई लोग क्या कहते हैं, भाई लोग माताएं क्या कहते हैं कि बहन आपको क्या मालूम गृहस्थ जीवन चलाने में कितनी समस्याएं आती है, आपने तो गृहस्थ जीवन किया ही नहीं है, अनुभव नहीं किया है, तो आप कैसे कर सकते हो, कैसे कह सकते हो। तो बाबा ने मुझे कहा कि आप ये गृहस्थ जीवन के बारे में सबको ये बताना, मैंने ज्ञानामृत में भी इसके बारे में लिखा हुआ है। तो बाबा ने कहा कि आदर्श गृहस्थ जीवन आप सब जानते हैं, हम सब गृहस्थ जीवन का है, और मैं हमेशा ही कहता हूँ और मानता भी हूँ कि यह विश्वविद्यालय का ग्रेटेस्ट हमारे को हेल्पिंग जो है मदद है तो यही है कि गृहस्थ व्यवहार में रहते हुए भी हम कमल पुष्प समान जीवन व्यतीत करके श्रेष्ठ में श्रेष्ठ पद प्राप्त कर सकते हैं। उसके लिए घर बार छोड़ने की जरूरत नहीं है, प्रवृत्ति को छोड़ने की जरूरत नहीं है, परिवार को छोड़ने की जरूरत नहीं है, हम गृहस्थ में रहते हुए भी श्रेष्ठ पद प्राप्त कर सकते हैं। जो शंकराचार्य और मंडन मिश्र के बीच में डिबेट हुई और शंकराचार्य की जीत हुई और मंडन मिश्र की हार हुई, यहाँ ये नहीं है, यहाँ तो सभी शंकराचार्य के माफिक, सभी मंडन मिश्र के माफिक श्रेष्ठ जीवन गृहस्थ व्यवहार में रहते हुए बना सकते हैं। तो बाबा ने मुझे कहा कि बच्चे मुझे तुझे मालूम है कि बाबा ने आदर्श गृहस्थी क्या कही है, तो मैंने कहा बाबा आप बताओ आदर्श गृहस्थी क्या कही है, क्या किस लक्ष्य से आप कह रहे हो। तो बाबा ने कहा कि मैंने आदर्श गृहस्थी के अंदर समय के विभाजन करने की बात कही हुई है, आठ 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 तीन डिवीजन किया हुआ है और कहा हुआ है, आठ घंटा जो है अपना लौकिक कारोबार अर्थात शरीर का जो कारोबार है, नींद करना, स्नान पानी, भोजन आदि के लिए आठ घंटा, और फिर 8 घंटा जो है बाबा ने कहा कि आप अपनी लौकिक प्रवृत्ति, आप अपने खुद का जीवन व्यवहार और जीवन निर्वाह और अपने परिवार का भी जीवन व्यवहार और निर्वाह का खर्च करने के लिए जो कमाई करनी पड़े वो आप कर सकते हैं, और तीसरा 8 घंटा जो है ईश्वरीय कमाई करने के लिए, ईश्वरीय जीवन की श्रेष्ठ अनुभूति करने के लिए और प्राप्ति करने के लिए, क्योंकि वर्तमान संगम युग ही ऐसा समय है जिसके अंदर आप अपने भविष्य का सारा ही कारोबार आप कर सकते हो। ब्रह्मा बाबा ने हमने जो योग की प्रदर्शनी बनाई थी उसका लास्ट चित्र ब्रह्मा बाबा ने बना करके भेजा था, अपने पृथ्वी जो है मृत्यु सैया पर है और ऊपर में एटम बम हाइड्रोजन बम है और बाजू में सन्यासी जो है वो कहता है कि अभी तो कलयुग छोटा बच्चा है और ऊपर से विनाश के लिए करने के लिए एटम बम हाइड्रोजन बम तैयार है, और उसके नीचे बाबा ने लिखवाया था, खुद ने लिख करके भेजा था कि आपका भाग्य का आप ही विधाता हो, आपके भाग्य का आप ही विधाता हो, ना आपका भाग्य और कोई बना सकता है ना आपका भाग्य और कोई बिगाड़ सकता है, आप अपने भाग्य के मास्टर विधाता हो, मास्टर ब्रह्मा हो, उसी के हिसाब से अपना भाग्य का निर्माण करने का प्रयत्न कीजिए, भविष्य के भाग्य का। तो इस प्रकार से बाबा ने कहा कि 8 घंटा जो है लौकिक जीवन शरीर के निर्वाह अर्थ जो भी है खान पान नींद आदि जो भी है 8 घंटा लौकिक कमाई के लिए और 8 घंटा जो है ईश्वरीय कमाई के लिए। तो मैंने ब्रह्मा बाबा को कहा बाबा ये पॉसिबल नहीं है, आज की दुनिया में इतनी महंगाई हो गई, इतनी महंगाई हो गई है, तो आपकी आज की दुनिया में 8 घंटे के पुरुषार्थ के आधार पर अपना और अपने परिवार का जीवन निर्वाह जो है वो इम्पॉसिबल है, कम पड़ेगा। और मैंने बाबा को कहा बाबा आपने जो सृष्टि चक्र बताया हुआ है 5000 वर्ष का, सत्युग त्रेता द्वापर कलयुग आता है, वो कल्प वृक्ष के साथ और सृष्टि चक्र के साथ ठीक है, परंतु कॉमन मैन जो है हम सब कॉमन मैन के तरीके से ही जीवन व्यतीत करते हैं, हमारे जीवन में तो ये सृष्टि चक्र जो है 5000 वर्ष का जो है 1 महीने में ही परिवर्तन प्राप्त करता रहता है। तो बाबा ने कहा ऐसा कौन सा चक्र है जो 1 महीने में घूमता रहता है। तो मैंने बाबा को कहा बाबा ये हमारे लौकिक जीवन की कहानियां हैं, हमारे जीवन में ऐसा होता है कि नौकरी करने वाले जो होते हैं उनका पहला पगार जो मिलता है उसका पहला दिन जो है वो सत्युग होता है, दूसरा दिन जो होता है मतलब दूसरा जो है उसके बाद का जो है दूसरा हफ्ता वो जो है त्रेता युग है, फिर द्वापर युग है, और लास्ट में जो है लास्ट का जो हफ्ता जो है वो कलयुग है। तो बाबा सुनते रहे, तो मुझे कहा कि इसमें संगम युग तो आया नहीं, संगम युग कब होता है। तो मैंने बाबा को कहा बाबा संगम युग जो है ना जिस दिन सुबह उठते हैं तो कलयुग है और शाम को तनख्वाह मिल जाती है, तो वो संगम युग है, जिस दिन सुबह गरीबी है खिस्सा खाली है और शाम को पगार आदि के आधार पर जीवन तृप्त हो जाता है। तो इसके प्रकार से कहा कि मैंने कहा बाबा ये तो सामान्य जीवन जो है कॉमन मैन जो है उसका जीवन में तो ये 4 बातें एक ही मास में आ जाती है, सत्युग त्रेता द्वापर कलयुग पहला दूसरा तीसरा चौथा हफ्ते के अंदर हो जाता है। तब बाबा ने मुझे याद कराया कि बच्चे 8 घंटे की मेहनत, 8 घंटे की मेहनत से आधार पर 1 मास का भी खर्च जो है उसकी कमाई नहीं हो सकती है, तो 21 जन्मों की क्या 84 जन्मों की कमाई करने के लिए कितना समय देना चाहिए, आप ही बच्चे बाबा ने कहा सबको याद कराओ, ऐसा न हो जाए कि वर्तमान की कमाई के आधार पर भविष्य की कमाई जो है जो प्राप्ति जो है वो भविष्य की कमाई और भविष्य की प्राप्ति से हम वंचित हो जाए। ये बहुत बड़ी गुह्य बात थी और हमने जहां जहां गए कलकत्ता से आए नेपाल गए सब जगह पर जाते जाते सब जगह पर बाबा का यही संदेश दिया कि गृहस्थ जीवन जो है ये आदर्श गृहस्थ जीवन ये है, हमने उसके अंदर क्या कर दिया कॉम्प्रोमाइज कर दिया है। आप सब अपने जीवन से पूछिए कि अपने जीवन के अंदर ये जो कॉम्प्रोमाइज करने की बात है हम सचमुच वास्तव में आदर्श गृहस्थ जीवन जो बाबा ने कहा है, बाबा की जो प्रिस्क्राइब कंडीशंस है, बाबा की प्रिस्क्राइब जो टाइम टेबल है, उसके मुताबिक हमारा आदर्श गृहस्थ जीवन है। 8 घंटा सोने करने की बात तो ठीक है, परंतु 8 घंटा लौकिक कमाई और 8 घंटा ईश्वरीय कमाई, इस दोनों के बीच में जो कॉम्प्रोमाइज करना पड़ता है, और इसके कारण क्या होता है कि लौकिक कमाई के लिए ज्यादा अटेंशन देना पड़ता है और पारलौकिक कमाई जो है उसके अंदर उसके लिए हम कम ध्यान देते हैं। तो मैंने बाबा को कहा पर पारलौकिक कमाई के अंदर क्या करना चाहिए, तो बाबा ने कहा वो तो अभी नक्की करने का है ना, आप सबको बाबा ने तो कहा है गृहस्थ जीवन में जीवन व्यतीत करना है, परंतु ऐसी आदर्श गृहस्थ जीवन है जिसके आधार पर जो श्रेष्ठ पद चाहे सतयुग की दुनिया के अंदर चाहे त्रेतायुग की दुनिया के अंदर वो श्रेष्ठ में श्रेष्ठ पद प्राप्त कर सकते हैं। आप सब बाबा ने कहा सबको कहना अपने दिल पर हाथ रख करके कहे, अपने दिल पर हाथ रख करके कहे कि वर्तमान जीवन जिस प्रकार से हम व्यतीत करते हैं, हम बाबा ने कहा जो मुझे हरेक को कहना अपने दिल पर हाथ रख करके कहे कि वर्तमान समय जिस प्रकार से हम अपना लौकिक गृहस्थ जीवन व्यतीत कर रहे हैं, हमारा लौकिक गृहस्थ जीवन व्यतीत कर रहे हैं, उसी के आधार पर हम क्या श्रेष्ठ में श्रेष्ठ पद प्राप्त कर सकेंगे या नहीं कर सकेंगे, और नहीं कर सकेंगे तो बाबा ने कहा मुझे तो उनसे पूछना, अगर नहीं कर सकते हैं तो बाबा ने कहा कि सबको पूछना कि अब नहीं तो कब, अब नहीं तो कब, अब नहीं करोगे तो कब करोगे, क्योंकि यही हकीकत है, वास्तविकता है, और इसके कारण इस वास्तविकता को फेस करना पड़ेगा। अपन तो क्या होता है, मातेश्वरी जी ने हमको कहा था हमारे घर में रहे थे कि हम लोग जो है वास्तविकता के डर के मारे वास्तविकता को फेस करना ही छोड़ देते हैं, बाकी सब परिस्थितियों को हम फेस कर सकते हैं, पर जो रियलिटी जिसको कहते हैं अंग्रेजी में जो वास्तविकता जो है वो वास्तविकता को फेस करने में, क्योंकि हम सब जानते हैं, एक बार बाबा ने कहा था मुरली में साकार बाबा ने कि कोई भी बच्चा मुझे पूछे कि आज के दिन अब तक का जो मेरा पुरुषार्थ है उसके आधार पर, अब तक का पुरुषार्थ के आधार पर अगर मेरा आज शरीर छूट जाए तो मेरा भविष्य में क्या पद होगा, अगर किसी की भी इच्छा हो तो आकर के मुझे पूछे। तो मैंने बाबा को कहा, मुरली पूरी हुई ऊपर पांडव भवन के अंदर, तो मैंने बाबा को कहा आज तो आपके पास लाइन लग जाएंगी, सब आएंगे कहेंगे कि बाबा आज तक का हमारा इतना पुरुषार्थ, जो भी आप सब जानते हैं सब अपना पुरुषार्थ बता सकते हैं, और उस पुरुषार्थ के आधार पर अपना व्यावहारिक जीवन के आधार पर हमारा भविष्य का क्या पद हो सकता है वो सब पूछने के लिए सब आ जाएंगे। आप सब भी यहाँ बैठे हुए हैं, आपको भी ये गोल्डन चांस मिल जाए कि बाबा अब तक का हमारा पुरुषार्थ जो भी है जितना भी है जैसा भी है उस पुरुषार्थ के आधार पर हमारा शरीर अगर आज भी छूट जाए तो हमारा क्या पद हो सकता है। तो मैंने कहा बाबा आज तो आपके पास लाइन लग जाएंगी, जो आप कहते हो ना माउंट आबू से आबू रोड तक की लाइन लग जाएगी, इतनी बड़ी लंबी लाइन हो सकती है। बाबा ने कहा बच्चे तुमको क्या मालूम, बाबा ने सिंधी में शब्द कहा गुड़ जाने गुड़ की गोथली जाने, आपको क्या मालूम, बाप जानता है, बाप अपने बच्चों को जानता है, आप भी यहाँ सब कई माँ बाप बैठे हुए हैं अपने बच्चों को जानते ही है, उनका जीवन व्यवहार किस प्रकार से, कैसा उसका अभ्यास है, कैसी उसकी कमाई हो सकती है, वो सब हर एक माँ बाप अपने बच्चों का जीवन व्यवहार को जानते हैं। तो उस प्रकार से बाबा ने कहा कि मैं भी जानता हूँ बच्चों को, कोई मुझे पूछने को नहीं आएंगे। मैंने कहा क्यों नहीं आएंगे, तो बाबा ने कहा कि सबको मालूम है अपने आप, मैं जब क्लास में पूछता हूँ कि लक्ष्मी नारायण बनेंगे या राम सीता बनेंगे तो सब एक दूसरे को देख करके हिम्मत से कह देते हैं कि हम तो लक्ष्मी नारायण बनेंगे, ऐसा हाथ तो खड़ा कर देते हैं, पर तो उनके अंदर से पूछो कि आपका वर्तमान समय का जो इतना जितना पुरुषार्थ किया है उस पुरुषार्थ के आधार पर लक्ष्मी नारायण बनने के क्षमता कैपेबिलिटी आपकी अभी है या नहीं है। तो इसके आधार पर बाबा ने कहा कि सब अपने दिल के अंदर जानते हैं कि हम जो अभी पुरुषार्थ कर रहे हैं उस पुरुषार्थ के आधार पर हमारा क्या पद हो सकता है वो सभी जानते हैं। और इसलिए बाबा ने कहा कोई मेरे पास पूछने को नहीं आएंगे। तो मैंने कहा ठीक है बाबा, हम देखते हैं। तो बाद में संतरी दादी को मैंने बॉम्बे से पत्र लिखा कि कितने लोग आए बाबा से पूछने के लिए कि मेरा जीवन आज समाप्त हो जाए और अब तक का पुरुषार्थ के आधार पर मेरा भविष्य का पद क्या हो सकता है। तो संतरी दादी ने मेरे को पत्र लिखा, सिंधी में पत्र लिखा, दादी प्रकाशमणि ने वो सुनाया हमको, कहा कि कोई भी नहीं आया। तब मुझे ख्याल में आया कि हम सब वास्तविकता के डर से दूर होते रहते, भागते रहते। जैसे कोई शेर आता है तो हम सब छिप जाते हैं ना, इस प्रकार से रियलिटीज जो है, रियलिटीज को फेस करने का जो होता है, वो रियलिटीज को फेस करने के लिए हमारे में जो हिम्मत चाहिए, जो बल चाहिए, जो आदर्श हमारा जीवन जो बनाने का, जो पुरुषार्थ के बारे में हम अपने जीवन में सिंहावलोकन करें, इंट्रोस्पेक्शन करें, तो मालूम पड़ जाता है, सबको मालूम है कि हमारा वर्तमान जीवन का जो पुरुषार्थ जो है, आज तक का, अब तक का जितना भी पुरुषार्थ है, उसके आधार पर हमारा भविष्य क्या हो सकता है वो सब जानते हैं। ऐसा नहीं है, बाबा ने इसलिए कहा सब बच्चे जानते हैं, इसलिए मेरे पास पूछने के लिए आने की हिम्मत किसी को भी नहीं होगी, क्योंकि मैं जानता हूं और उनको भी मालूम है मैं अब तक का मेरा पुरुषार्थ के आधार पर बाबा मुझे क्या बताएंगे। मैं जो बताने वाला हूं वो बच्चों को दिल में समझ आ ही जाती है, बच्चों के पास जो समझ है उसके आधार पर ही मुझे मुझे जो बताना है वो उनके दिल में पहले से ही वो बात घूमती रहती है। तो उसके आधार पर बाबा ने जो कहा, इसके आधार पर आज हम इस प्रकार की चर्चा करें। हम इतने हमारी समस्याएं जो भी है, सबके पास समस्या है, समस्याओं का तो हम बाबा ने कहा हुआ है भाई, दादी गुलजार जो है ना वो रशिया गए हुए थे, तो रशिया में दादी गुलजार को एक अखबार प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर एक प्रश्न पूछा कि आपके सामने समस्या आती है तो आप कैसे उसको रिएक्ट करते हो, आपके सामने समस्या आती है तो आप कैसे रिएक्ट करते हो। तो गुलजार दादी ने बहुत सुंदर उसको जवाब दिया, वो अखबारों में, सभी अखबारों में आ गया था, रशिया के आया था और भारत में भी कई जगह पर वो जो उन्होंने भेजा था उसमें आया था। गुलजार दादी ने कहा कि जो होशियार विद्यार्थी होता है ना वो समस्या रूपी समस्या से डरता नहीं है, क्योंकि हम तो समझते हैं कि समस्या ये परीक्षा है, और विद्यार्थी सभी जानते हैं, आप सब जानते हैं, हम सब अनुभवी हैं कि परीक्षा आती है तो उसके अंदर क्या होता है। परीक्षा में अगर सफल हो गए, पास हो गए, चाहे फर्स्ट क्लास, चाहे डिस्टिंक्शन, चाहे जो भी सेकंड क्लास या तो थर्ड क्लास जो भी है, उन सब के आधार पर क्या हो जाएगा, हम सब जानते हैं कि इस प्रकार से समस्या को परीक्षा समझने से क्या होता है कि परीक्षा के आधार पर जीतेंगे हाँ तो हमारा जीवन कितना श्रेष्ठ होगा। और इसलिए उन्होंने, गुलजार दादी ने बताया कि हम समस्या को समस्या ही नहीं समझते, हम परीक्षा समझते, एग्जामिनेशन समझते। हम सब इस दुनिया के परीक्षा के अंदर बैठे हुए हैं और पेपर हमारे सामने है, बाबा ने पहले से ही पेपर हमारे हाथ में दे दिया है। अब सबको मालूम है बाबा ने पेपर जो है अंतिम परीक्षा के दो ही प्रश्न है, अंतिम परीक्षा के दो ही प्रश्न है जो गीता के अंदर भी अर्जुन ने श्री कृष्ण को कहा है, हाँ स्मृति लब्ध्वा, मेरी स्मृति जो है विस्मृति हो गई थी, मैं कौन हूँ, कहाँ का हूँ, कैसा हूँ, कहाँ से आया हूँ, क्या मेरा भविष्य है और मैंने 63 जन्मों में क्या जीवन व्यतीत किया, वो सारा ही जो है हाँ उसकी स्मृति आ गई है। और उसके आधार पर हमको ये भी स्मृति आ गई है कि हमारा भविष्य का जीवन कैसा होगा, क्या होगा। तो स्मृति लब्ध्वा और नष्टो मोह, मोह जो है जो पांच विकार जो है इसके अंदर एक मोह जो है बहुत बड़ा विकार है, और इसके कारण अर्जुन ने कहा कि मेरा मोह जो नष्ट हो गया है। हम सब जानते हैं, ग्रस्त व्यवहार में रहते हैं, परंतु क्या हमारा हम नष्टो मोह बने हैं, जो भी है जिस प्रकार से भी है। कृष्णा अय्यर जी जो है ना, जस्टिस कृष्णा अय्यर जी साइंस सेंटर में आए हुए थे, बॉम्बे में साइंस सेंटर है ना, वहां दादी ब्रिजेंद्र से मिलने के लिए आए हुए थे। तो कृष्ण नायर के नीचे में एक भाई राजा रामनाथन के ऐसा कोई नाम था, वो भी केरला का था और कृष्ण नायर जी भी केरला का था। तो उसने कृष्ण नायर जी को पूछा कि आपको ब्रह्मा कुमारी किस बात के लिए पसंद है, क्या क्यों आप उसको अच्छे समझते हो। इतने में विजेंद्र राजे ने किसी को बोला कि लौकिक कारोबार जो है लौकिक भाई है, इस प्रकार से लौकिक बात करके बताया। तो कहा ये इनका लौकिक शब्द बहुत ही अच्छा है, कृष्ण नायर जी ने कहा। इसके कारण क्या होता है कि नष्टो मोहा हम सहज से हो जाता है। क्यों? हम अपना समझते हैं, मेरा भाई मेरी बहन मेरा ये इस प्रकार से समझते हैं, मेरा समझते हैं तो समस्या होती है, उसके कारण बंधन होता है। और इस प्रकार से लौकिक समझने से क्या होता है कि हम उनसे कट ऑफ कर देते हैं। ये लौकिक है, जीवन व्यवहार के अंदर लौकिक है, भौतिक है, इस प्रकार से हमारे जीवन के अंदर ये साथी है। जब तक कब तक साथी रहेंगे, हमारे साथ में साथ कहाँ तक रहेगा, ये हकीकत जानते हैं, हम सब जानते हैं। तो इसलिए कृष्ण नारायण ने कहा कि इनके जीवन के अंदर वो समाज में रहते हैं, गृहस्थ में रहते हैं, सब कुछ करते हुए भी नष्टो मोहा बनने का सतत प्रयत्न करते हैं। और ये उनकी बात जो है उसके आधार पर ही मैं भी नष्टो मोहा हो गया और इसके कारण मेरा भी जीवन परिवर्तन हो गया। क्योंकि जस्टिस कृष्ण नायर की वाइफ ने वहां पर अपने न्यूयॉर्क में शरीर छोड़ दिया था अचानक, उसके कारण जो है उसके मोह में आकर के बहुत डिप्रेशन में आ गए थे। तो इसके बाद में उनके पास हमारे जयप्रकाश भाई गए हुए थे, इन्होंने उनको बताया कि आप हमारे ब्रह्मा कुमारी इसमें आइए, 7 दिन का कोर्स कीजिए। तो उसने कहा ठीक है, तो आया था। तो इस प्रकार से 7 दिन का कोर्स किया और कई बातें हुई, वो तो लंबी चौड़ी बातें हैं, परंतु जस्टिस कृष्ण नायर ने बताया कि ब्रह्मा कुमारी के ज्ञान के कारण मेरे मन में जो डिप्रेशन आया हुआ था, मेरी पत्नी के प्रति मेरा जो मोह आदि जो भी था, ये सब मैं नष्ट मोहा बनकर के साक्षी बनकर के जीवन के हर व्यवहार को हर क्षण को मैं साक्षी बनकर के जीवन व्यतीत कर रहा हूँ। और इसलिए जस्टिस कृष्ण नायर ने कहा भी ये भी कि मेरे पास ब्रह्मा कुमारी का ज्ञान नहीं होता तो इंदिरा गांधी की जो रिट पिटीशन हुई थी, जो इलाहाबाद हाईकोर्ट का जगमोहन लाल सिन्हा ने जजमेंट दिया था कि उसके कारण उसको डिस्क्वालीफाई कर दिया था, तो उन्होंने बताया वो भाई को कि ब्रह्मा कुमारी का ज्ञान मुझे नहीं होता तो मेरा जजमेंट दूसरा होता और भारत का इतिहास दूसरा होता, परंतु ब्रह्मा कुमारी के ज्ञान के कारण मैं अपने बैलेंस को संभाल सका और संभाल करके मैंने अपने तर्क बुद्धि के आधार पर मैंने जजमेंट दिया। तो इस प्रकार से हमारे ज्ञान के अंदर व्यवहार के अंदर हमारे सामने अनेक समस्याएं आ सकती है, परंतु क्या हम उस समस्याओं को पार करने में सफल होते हैं? प्रयत्न करना चाहिए। एक उसके अंदर भी मैंने 2 बार 3 बार भी कहा हुआ है कि इस प्रकार से 2-3 साल पहले 18 जनवरी की मुरली रिवाइज हो रही थी, मैंने तब से ये बात पक्की कर दिया हुआ है अपने जीवन के अंदर। बाबा ने कहा साकार बाबा की मुरली रिपीट हो रही थी 18 जनवरी के, सिलेक्टेड पैराग्राफ्स होते हैं, हमारे राजू भाई उसको सिलेक्ट करते हैं, सबको भेजते हैं, उसमें एक बहुत अच्छी बात कही थी वर्तमान जीवन और भविष्य के जीवन के बारे में। सबको यही बात बाबा ने कही थी कि अगर आप सबके पास जिनके लिए ये पॉसिबल है, जिनके जीवन के अंदर उनके वर्तमान जीवन खुद का और अपना वर्तमान परिवार का जीवन संभालने के लिए पर्याप्त धन है, तो पर्याप्त धन के आधार पर नया फिर आगे धन कमाई करने का छोड़ करके भविष्य की कमाई के प्रति विशेष ध्यान देना चाहिए। ये सब बहुत अच्छी बात बाबा ने कही है और इसलिए मैं आपके सामने इसके कहने के लिए आया हुआ हूँ कि हम सब अपनी भविष्य की कमाई के लिए जितने जागरूक होने चाहिए इतने हैं या नहीं है। अगर नहीं है तो क्या हो सकता है, और है हाँ तो क्या हो सकता है, सोचिए इसके ऊपर। क्या वर्तमान जीवन के पुरुषार्थ के आधार पर हमारा श्रेष्ठ में श्रेष्ठ सत्यु की आदि से इस जीवन के अंदर आने का, दुनिया के अंदर आने का कारोबार हो सकता है? सोचिए इसके ऊपर। हमको मैं ऊपर मेडिटेशन हॉल में अव्यक्त बाप दादा की पधरामणी हुई थी और अव्यक्त बाप दादा की पधरामणी के समय पर एक माता जो है वो रो रही थी, तो अव्यक्त बाबा का ध्यान उसके प्रति गया। बाबा ने कहा बच्ची रोती क्यों है, तो बाबा ने माता ने बाबा को जवाब दिया कि बाबा मैं अपनी तकदीर पर रोती हूँ। बाबा ने कहा क्यों, कहा मैंने ब्रह्मा बाबा को और मातेश्वरी जी को साकार में नहीं देखा, इसके लिए मेरी तकदीर पर मैं रोती हूँ। तो बाबा ने बहुत अच्छी बात कही, वो सबके लिए काम की बात है, क्योंकि यहाँ पर जितने भी बैठे हुए हैं 90% मैं समझता हूँ ऐसे बहन भाई है जिन्होंने साकार ब्रह्मा बाबा को और मातेश्वरी जी को नहीं देखा है, जैसे वो माता जी ने भी कहा कि मैंने साकार बाबा को और मातेश्वरी जी को नहीं देखा। उस माता के द्वारा हम सबको बाबा ने यही संदेश दिया। बाबा ने कहा कि बच्ची ये तो ड्रामा में नूंद हो गई, हम सब जितने यहाँ बैठे हुए जिन्होंने भी बाबा मम्मा को साकार रूप में नहीं देखा है उनके लिए है। बाबा ने कहा कि ये तो आपके जीवन में नूंद हो गई ड्रामा के अंदर 5000 वर्ष के चक्कर के अंदर कि साकार ब्रह्मा बाबा और मातेश्वरी जी को आपने नहीं देखा, ये नूंद हो गई। परंतु बाबा ने कहा कि अभी भी तुम्हारा भविष्य तुम्हारे हाथों में है, आपका भविष्य आपके हाथों में है, आप अभी भी पुरुषार्थ करेंगे तो सतयुग की आदि से आने का पुरुषार्थ हो सकता है, और सतयुग की आदि से आएंगी तो लक्ष्मी नारायण को साकार रूप में इस दुनिया का कारोबार करने के लिए जो भी होता है उसको देखने के लिए, उनके साथ रास आदि जो भी है आप जानते हैं क्या क्या हो सकता है, तो वो सब करने के लिए तुमको वो गोल्डन चांस है। परंतु अभी से उसके लिए पुरुषार्थ नहीं किया, ये सावधानी है अव्यक्त बाबा की सबके लिए, हम सबके लिए सावधानी, ये मैं अपनी नारा होकर के नहीं कह रहा हूँ, मैं भी हमेशा ही ये सावधानी हमेशा ध्यान में रखता हूँ कि बाबा ने कहा कि अगर अभी भी बेफिक्र बादशाह होकर के बेफिक्र बादशाह के या जो भी आप जानते हैं बाबा ने शब्द यूज किए हुए हैं उसके आधार पर पुरुषार्थ में तीव्रता नहीं लाई और नहीं लाई पुरुषार्थ के अंदर, तो सत्यों की आदि से आने के जीवन से भी तुम वंचित हो जाएंगे, और जीवन से सत्यों की आदि का जीवन से वंचित हो जाएंगे तो क्या हो जाएगा, ड्रामा के अंदर परमानेंटली हर कल्प आपके जीवन में लिखा जाएगा कि हमने ब्रह्मा बाबा और मातेश्वरी जी को साकार रूप में इस कल्प में भी नहीं देखा, और सत्यों की आदि से आने वाला नया भविष्य जो है लक्ष्मी नारायण के रूप का जो भविष्य है उसको भी हमने नहीं देखा। इस प्रकार से बाबा ने कहा हमेशा के लिए कल्प कल्प के लिए ये तुम्हारा हो जाएगा, और इसके कारण बाबा ने बहुत सुंदर शब्द कहा जो रो रही थी ना, तो बाबा ने कहा इसके कारण क्या होता है सिंधी में और हिंदी में भी कल्पांत करके एक शब्द है, कल्पांत माने कल्प का अंत भी हो सकता है और दूसरा कल्पांत माना रोना भी हो सकता है। जिन्होंने जो साहित्य जानते होंगे शब्दों की डिक्शनरी जिनको मालूम होगा उसको मालूम है कल्पांत माना रोना भी हो सकता है और कल्प का अंत, अभी संगम युग जो है इस कल्प का अंत है वो भी हो सकता है, और दूसरा वो माता जो रो रही थी उसको भी बाबा ने कहा तुम अभी कल्पांत कर रही है। तो इस प्रकार से बाबा ने कहा कि अगर तुमने तीव्र पुरुषार्थ नहीं किया तो सारा ही कल्प के अंदर तुमको हमेशा ही इस प्रकार का कल्पांत करना पड़ेगा। तो बाबा ने उस माता को पूछा तुमको ये भविष्य मंजूर है, तो उसने कहा नहीं मुझे मंजूर नहीं है। तो बाबा ने कहा तो फिर तीव्र पुरुषार्थ करो, अपने पुरुषार्थ की गति और विधि को तेज गति से आगे बढ़ो। तो इस प्रकार से बाबा ने जो उनको कहा हुआ उस माता को जो कहा, इस प्रकार से अगर हमारा पुरुषार्थ में हमने तीव्रता नहीं लाई तो क्या हो जाएगा, हम सब लक्ष्मी नारायण बनने के लिए वो सबके मन में जो कल्पना होती है इच्छा भी होती है, परंतु क्या होगा दोनों भाग्य से वर्तमान जीवन का भी और भविष्य का जीवन का दोनों भाग्य से हम वंचित हो जाएंगे तो क्या हो जाएगा। हम सबके जीवन में यही होगा जो माता को बाबा ने कहा कि तुमको कल्प कल्प कल्पांत करना पड़ेगा, ये भाग्य से तुमको मंजूर है, बाबा ने उस माता को पूछा। तो इस प्रकार से हम बाबा ने जो पूछा उस माता को निमित्त बन करके मैं तो थैंक्स कहता हूँ उस माता को कि उसने इस प्रकार से बाबा से सवाल पूछ करके रोते रोते जो बात कही उसके आधार पर जो हम सबको एक आथक मिली, हम सबको एक जवाब मिला, हम सबको एक मार्गदर्शन मिला, कि अगर हमारा पुरुषार्थ जो है उसके अंदर तीव्रता नहीं लाए हैं, हम वर्तमान की समस्याओं से ऊपर उठ करके आगे का भविष्य कमाई के लिए पूर्ण रूप में ध्यान नहीं देंगे तो क्या हो जाएगा। इस प्रकार से हमारा अपने आप का जीवन जो है, व्यवहार जो है, इसके लिए ही करना चाहिए। इसलिए तो ये रिट्रीट रखी हुई है। इस रिट्रीट के अंदर हम अपने जीवन का सिंहावलोकन करें, हम अपने जीवन का इंट्रोस्पेक्शन करें, हम अपने जीवन का इंट्रोस्पेक्शन करके नक्की करें कि वर्तमान का जीवन हमारा जो है, वर्तमान का पुरुषार्थ जो है, जिसके आधार पर हमारा भविष्य बन सकता है, इसके आधार पर हमारा भविष्य जो है इतना श्रेष्ठ बन सकेगा। अगर नहीं बन सकेगा तो क्या हो जाएगा, नहीं बन सकेगा तो क्या हो जाएगा। मैं हमेशा ही खलील जिब्रान की एक कहानी सुनाता हूँ, मैंने ज्ञानामृत में भी लिखा हुआ है। खलील जिब्रान जो है उसने एक कहानी लिखी हुई है कि एक गिदड़ था, गिदड़ माना फॉक्स, हम गुजरात में उसको सियार कहते हैं, फॉक्स कहते हैं। वो फॉक्स जो है सुबह सुबह शिकार करने के लिए निकला, क्योंकि उसको भूख लगी थी तो उसको नाश्ते के लिए जरूरत थी। तो सूर्योदय सुबह हो रहा था और सूर्योदय के समय पर उसने अपना जो भी जो परछाई जो है, शेडो जो है, उसको देखा। तो सुबह तो सूर्योदय के समय पर तो परछाई बहुत लंबी होती है, बहुत लंबी होती है। उस प्रकार से उसने देख करके कहा, अरे वाह, मैं इतना महान हूँ, मैं इतना बड़ा हूँ, इतना महान हूँ, इतना बड़ा हूँ, तो मुझे तो नाश्ते के लिए आज एक कैमल चाहिए, एक ऊंट चाहिए, एक कैमल चाहिए। मैं कैमल के सिवाय और किसी का आज शिकार नहीं करूंगा और नाश्ता नहीं करूंगा। तो फॉक्स जो है घूमता रहा, घूमता रहा, घूमता रहा, परंतु क्या हुआ, उसको कैमल भी नहीं मिला और फॉक्स की ताकत भी नहीं है कि कैमल का शिकार कर सके। तो इतने में दोपहर का 12 बज गया, दोपहर का 12 बज गया तो क्या हुआ, उसने देखा अपने आप को, अपनी परछाई को देखा। तो अपने 12 बजे के सूर्य जब मध्याह्न होता है, सिर पर आ जाता है, तो अपने सबका हम जानते हैं अपनी परछाई अपने पांव के अंदर ही आ जाती है। तो उस प्रकार से वो फॉक्स ने भी देखा कि मेरा तो अभी मेरा परछाई तो मेरे चार पांव के अंदर आ गई है। तो इसलिए उसने मन में कहा कि अब मुझे कैमल तो क्या है, चूहा भी मिल जाएगा तो भी बहुत अच्छा है। तो इस प्रकार से एक खलील जिब्रान ने सबको संदेश दिया है कि जीवन की शुरुआत में, ईश्वरीय जीवन की शुरुआत में हम सब बहुत लंबे लंबे प्रोग्राम बना लेते हैं, बहुत लंबे लंबे स्वप्न देखते रहते हैं कि हम ये करेंगे, हम ये बनेंगे, हम ये करेंगे। इस प्रकार से हमारे जीवन के अंदर ये लंबी लंबी बातें तो होती है, परंतु जब वास्तविकता होती है, वास्तविकता के आधार पर अमेरिका के एक लेखक ने लिखा हुआ है, अमेरिका में जितने भी बच्चे पैदा होते हैं ना, तो उसकी माँ विचार करती है कि ये मेरा बच्चा जो है ना, भविष्य का अमेरिका का राष्ट्रपति बनेगा, प्रेसिडेंट बनेगा। इस प्रकार से हर एक माँ बाप अपने बच्चों के बारे में सोचते हैं, अपने बारे में भी सोचते हैं, बहुत लंबी कहानी करते रहते हैं। जिसमें गुजराती में हमारे पास स्कूल में एक कहानी थी, शेख चल्ली, शेख चल्ली की दिनचर्या। शेख चल्ली जो है वो सिर पर घी भर करके मटका लेकर के जा रहा था। शेख चल्ली जाते जाते सोचा कि कभी मैं इसको बेचूंगा, ये पैसा आएगा, फिर ऐसा होगा, फिर ऐसा होगा, फिर ऐसा होगा, ऐसा करते करते क्या हो गया, फिर कहा मैं शादी करूंगा, फिर ये होगा, बच्चे हो गए, बच्चे आकर के मुझे करेंगे तो मेरा हाथ, ऐसा उसका हाथ हो गया, मटका जो था घी का वो गिर गया और वास्तविकता वही हुई। इस प्रकार से हम भी बहुत लंबी लंबी बातें तो करते हैं, करनी चाहिए, मैं ये ना नहीं कहता हूँ, परंतु क्या होता है, भावनाओं के साथ वास्तविकता का बीच में बैलेंस होना ही चाहिए। भावनाओं के साथ वास्तविकता का बैलेंस नहीं रखेंगे और अकेला भावनाओं के आधार पर चलेंगे तो क्या हो जाएगा। जब वास्तविकता सामने आएंगी, हमारे सामने वास्तविकता आएंगी, तब क्या हो जाएगा, तब हमको रियलाइजेशन होगा कि वास्तविकता तो ये है, हम भावनाओं के आधार पर तो चलते रहे। हम भावनाएं जिसको सेंटीमेंट्स कहते हो, इमोशंस, सेंटीमेंट्स इमोशंस जो कहते हैं, वो भी अच्छा है, मैं ना नहीं कहता हूँ, परंतु वास्तविकता के साथ हमारे इमोशंस, हमारी भावनाओं के बीच का बैलेंस होना चाहिए। और जीवन का लक्ष्य जो है, पुरुषार्थ का लक्ष्य जो है, वो वास्तवदर्शी होना ही चाहिए। वास्तविकता को छोड़ करके अकेले भावना में रहेंगे तो क्या होगा? दुष्टारत में तीव्रता नहीं लाएंगे तो क्या होगा? आप जानते हैं, हमने एक प्रदर्शनी का चित्र जो बनाया था, जगदीश भाई ने बनाया था कि सारा 60 साल की अगर जीवन है तो कितना समय नींद में जाता है, कितना समय कमाई के लिए जाता है, कितना समय क्या जाता है, और उस प्रकार से आखिर में कहा कि पुरुषार्थ के लिए 60 साल के जीवन के अंदर भी 10 साल भी मुश्किल से होता है। उसके आधार पर हम सबको बताते थे कि आप अपने पुरुषार्थ के अंदर, अपने जीवन के अंदर श्रेष्ठ पुरुषार्थ करना हो तो आपके पास 10 साल का ही मार्जिन है, 10 साल, क्योंकि बाकी का समय आपका नींद में, खाने पीने, आदर, आना जाना, ट्रांसपोर्ट आदि में चला जाता है। 10 साल भी मुश्किल, जिनका जीवन का लक्ष्य श्रेष्ठ होगा वही 10 साल पुरुषार्थ कर सकेगा। तो उसी के आधार पर हम सबको नक्की करना है कि हमारा भविष्य क्या है। हमारा भविष्य का बाबा ने जैसे हमको योग की प्रदर्शनी में बताया, आपका भाग्य का आप ही भाग्य विधाता हो। हम सबको बाबा का ये साकार बाबा का चित्र और साकार बाबा ने चित्र के नीचे लिखी हुई लिखत याद रखनी चाहिए कि मेरा भाग्य का मैं ही भाग्य विधाता हूँ, और उसके आधार पर मेरा भाग्य न कोई बना सकता है न कोई बिगाड़ सकता है। बाबा भी पुरुषार्थ करने का मार्गदर्शन दे सकता है, परंतु बाबा भी हमारी तरफ से पुरुषार्थ नहीं कर सकते हैं। बाबा मार्गदर्शन देगा, गाइड करेंगे, सब कुछ करेंगे, परंतु युद्ध के मैदान के अंदर जब होता है तो क्या होता है? युद्ध के मैदान में प्रैक्टिकल रियालिटीज होती है और प्रैक्टिकल रियालिटीज के सामना करना ही पड़ता है। अमेरिका में एक बहुत सुंदर एक पुस्तक लिखा हुआ है जिसके आधार पर बाद में सिनेमा भी बना हुआ था, स्कूल फॉर स्काउंड्रल्स, स्कूल फॉर स्काउंड्रल्स। उसके अंदर शैतान कैसे बनना चाहिए, लोगों के साथ ठगी कैसे करनी चाहिए, वो सिखाने के लिए एक साल का कोर्स था। उसमें 6-7 मास जो है उसका थियोरी सिखाते थे, और उसके बाद 4-5 मास जो होगा उस स्टूडेंट्स को कहते कि जाओ आप दुनिया में जाओ, आपके पीछे पीछे आपका एक प्रोफेसर आएगा, और आपका प्रोफेसर आपने जीवन में औरों के साथ ठगी कैसे सक्सेसफुली किया हुआ है वो देखेगा, और आप स्काउंडल बनने में सक्सेसफुल हो गए तो आपको हमारी स्कूल का, हमारी कॉलेज का जो स्कूल फॉर स्काउंडल्स का उसका सर्टिफिकेट मिलेगा। इस प्रकार से मैंने जब वो किताब पढ़ी तो मेरे को लगा कि क्यों नहीं है, हमारा भाई जो हमारा जो ये स्कूल जो है, विश्वविद्यालय, विश्वविद्यालय मतलब यूनिवर्सिटी जो भी है वो किसके लिए है? होनहार देवी देवताओं के लिए। हम सब यहाँ पर कौन पढ़ते हैं? हम बाबा के बच्चे तो है, परंतु आने वाली दुनिया के देवी देवताएं हैं, जिसके लिए तो गाया हुआ है 33 करोड़ देवी देवताएं जो है। तो इस प्रकार से हम होनहार आने वाली दुनिया के प्रिंस प्रिंसेसेस हैं, और इसके कारण बाबा जो ट्रेनिंग देते रहते हैं उस ट्रेनिंग के बारे में भी सोचना चाहिए कि हम जिस प्रकार से पुरुषार्थ कर रहे हैं उसके आधार पर क्या हो सकता है। मैंने थोड़े दिन पहले भी हमारे अन्य भाइयों का क्लास था, उसके अंदर भी हमने कहा कि जैसे विकारों में 5 विकार के साथ 6ठा विकार है। आप जानते हैं 5 विकार तो आप जानते हैं, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, और इसके सिवा एक 6ठा भी विकार है, आलस। मालूम है, सबको मालूम है, सब उसमें अनुभवी है। तो इस प्रकार से 6ठा विकार भी है, इस प्रकार से ज्ञान का भी सब्जेक्ट जो है, ज्ञान, योग, धारणा और सेवा, ये 4 सब्जेक्ट तो है, परंतु साथ में 5वां सब्जेक्ट जो भी है उसके बारे में भी मैं आपका ध्यान खिंचवाना चाहता हूँ कि ये 5वां सब्जेक्ट जो है वो मैनेजमेंट का है। मैनेजमेंट अर्थात यज्ञ का कारोबार, यज्ञ का इस प्रकार से होवनहार दुनिया का, विश्व का राज्य कारोबार जब हमारे हाथों में आएगा तो अब क्या हम इंडिपेंडेंटली, जो बाबा ने, साकार बाबा ने एक लिफलेट में बने शब्द 3 लिखे थे, अखंड, अटल और निर्विघ्न। अखंड, अटल और निर्विघ्न 2500 वर्ष तक का राज्य कारोबार करने की जिम्मेदारी के लिए हम लायक है? तो अपने आप से पूछिए कि अगर हमारे हाथों में सारे विश्व का कारोबार का अखंड, अटल, निर्विघ्न के रूप में चलाने का कारोबार का हमारे हाथ में आ जाए, धरोहर हमारे हाथ में आ जाए, तो क्या हम आने वाले भविष्य के ऋषि महाराजा बनकर के काम कर सकेंगे। हमारे हाथ में 100% बाबा निश्चिंत होकर के परम धाम में बैठ करके हमको भेज करके निश्चिंत होकर के करेंगे। मैंने बाबा से उसके ऊपर पूछा था कि बाबा माया तो परीक्षा लेती है, उन्होंने आप क्यों परीक्षा लेते हो, आप क्यों परीक्षा लेते हो? तो बाबा ने कहा मैं क्यों परीक्षा नहीं लो, मुझे आप में से ही ऐसे बच्चों को चुनना है जो भविष्य का राज्य कारोबार संभाल सके। और हम क्योंकि दुनिया के, बाबा ने कहा कि दुनिया के सभी धर्म स्थापक क्या करते हैं, आपको मालूम है, अभी हम बच्चों को मालूम पड़ गया है कि दुनिया के अन्य धर्म स्थापक जो है इस सृष्टि रूपी रंगमंच पर आते हैं और अंत तक जो है यहाँ ही रह करके अपने धर्म की जो भी बातें जो है वो आगे बढ़ाते हैं, उसका उसकी सुरक्षा के बारे में काम करते हैं, सब कुछ इस प्रकार से करते हैं। और इसके लिए उनके जीवन में अन्य धर्म स्थापकों के लिए ये प्रश्न नहीं है कि हमारे बाद हमारा कौन संभालेगा, परंतु शिव बाबा ने कहा कि मैं तो 2500 वर्ष तक परम धाम में रह जाऊंगा, आप बच्चों को नीचू भेजने वाला हूं, तो क्यों नहीं मैं आप में से भी ऐसा बच्चों का ध्यान रखूं, निर्माण करूं, ऐसा उसका संशोधन करूं, परीक्षा वो लूं जिसके आधार पर आपके हाथों में विश्व का कारोबार हमारे हाथों में आपके हाथों में दे करके मैं निश्चिंत हो जाऊं। तो इस प्रकार से ये अपने आप से पूछना चाहिए कि क्या हमारे हाथ में विश्व का कारोबार आ जावे तो हम कर सकते हैं। आप सबने देखा होगा अभी तो मुरलियां जो रिपीट हो रही है, रिवाइज हो रही है, तो पहले बाबा दो दिन तीन दिन के बाद जल्दी जल्दी आते थे। आप सबको रिवाइज मुरली के देश आपको देखा होगा 71 से जो बातें हुई 72, 73, 74 जल्दी जल्दी आते थे बाबा, क्योंकि उस टाइम पर हम बच्चों को तैयार करने के लिए कहते थे। बाबा ने 21 जनवरी की जो 69 की मुरली है उसके अंदर बहुत सुंदर एक बात कही हुई है कि अब तक तो ये सृष्टि रूपी रंगमंच के ऊपर ज्ञान सूर्य और ज्ञान चंद्रमा का उनका व्यवहार आपके सामने था और उनका मार्गदर्शन मिलता था, और इसके लिए आप ज्ञान सूर्य और ज्ञान चंद्रमा के आधार पर आपका जीवन व्यतीत करते थे। अब जो बाबा ने कहा 21 जनवरी के बाद अब क्या हो गया, अब बाबा मम्मा जो है ना गुप्त रूप में देखते रहते हैं कि बच्चे जो है ये सितारे जो है, हम ज्ञान सितारे जो है, ये सितारों की रिमझिम कैसी है, ये सितारों की रिमझिम कैसी है और कैसे दुनिया का कारोबार कर सकते हैं और उनके आधार पर ये यज्ञ का कारोबार कैसे हो सकता है। कल दादी जी आए थे तब मैंने देखा, मैंने मन में सोचा कि देखो बाबा ने कहा है ज्ञान सितारा, तो ज्ञान सितारों में हमारी दादी प्रकाशमणि ने कितना अच्छी रीत से राज्य कारोबार या विश्वविद्यालय का कारोबार कितना अच्छी रीत से संभाला। 69 जनवरी से बाबा अव्यक्त हो गए और उसके बाद आप जानते हैं 6 साल पहले ही वो अव्यक्त हो गए, तब तक का यज्ञ का कारोबार कितनी अच्छी रीत से संभाला, किसी की भी कोई भी बहन भाई की फरियाद नहीं, और सबके दिल में यही मन में था, जैसे हम कहते हैं मेरा बाबा मेरा बाबा मेरा बाबा, इस प्रकार से हम सब कहते हैं मेरी दादी मेरी दादी मेरी दादी सा। आप सब के दिल में कल यही था क्या, और क्या था, सब दादी जी आए तब क्या लगता था, आप सबको यही लगता था मेरी दादी आई मेरी दादी आई, दादी और हम अलग अलग नहीं है, इस प्रकार से था। तो इस प्रकार से दादी ने एक सितारों की रिमझिम के अंदर आज जानकी दादी संभाल रही है, इस प्रकार से हमारे जो एंसेस्टर्स जो भी है इन सब ने सितारों के रूप में ये जीवन व्यवहार इतना सुंदर किया और इतना सुंदर संस्था का कारोबार चलाया, विश्वविद्यालय का कारोबार चलाया कि आज जो हम हैं, जिस स्थिति पर हम हैं, जहां तक ये विश्वविद्यालय हमारा कारोबार जो बड़ा हुआ है, इन सब कारोबार के लिए इन सभी हमारे जो एंसेस्टर के रूप में पूज्य के रूप में जो भी भाई बहन जो थे, जो दादिया के रूप में जो थे यहाँ पर, इनके पवित्र पुरुषार्थ के आधार पर ही, उनके पुरुषार्थ के आधार पर, उनकी तीव्र पुरुषार्थ के आधार पर आज यह विश्वविद्यालय इतना बड़ा विशाल रूप धारण कर सका हुआ है। देश विदेश के अंदर इतने सेवा केंद्र है, इतने उपसेवा केंद्र है, इतने गीता पाठशाला और क्लासेस चलते हैं देश में विदेश में सब जगह पर। बाबा कल भी बाबा ने जयंती बहन को जो कहा, इस प्रकार से देश विदेश के अंदर इतना जो कारोबार अच्छे में अच्छी रीत से चलता है, इसका कारण यही है तीनों ने अपना जीवन श्रेष्ठ बना करके यज्ञ को यहां तक लाया, परंतु आगे का क्या? अंग्रेजी में कहते हैं थस फार एंड नो फर्दर, ऐसा नहीं होना चाहिए। हमारे जीवन के साथ आगे का भविष्य का कारोबार के लिए हम निमित्त है, आगे को इस विश्वविद्यालय को आगे बढ़ाने के लिए हम आगे निमित्त है, हम आगे पुरस्कार करके जिस हाइट्स तक जिस स्थान तक हमारे पूर्वज दादियों आदि ने जो भी बड़े भाइयों ने जो भी संस्था को जहां तक लाया हुआ, इनसे आगे भविष्य का सितारा जो है, भविष्य का कारोबार जो है, भविष्य का प्रारब्ध जो है, यार विश्वविद्यालय के भी प्रारब्ध हमारे हाथों में है। और इसलिए हम आपसे अपने आप से पूछे कि क्या यह विश्वविद्यालय का भविष्य हमारे हाथों में कोई भी प्रकार का बिगड़ का रहेगा, क्या होगा? ये विश्वविद्यालय का कारोबार हमारे हाथों में हो और भविष्य का हमारे हाथों में, तो क्या निर्विघ्न के रूप में जैसे हमारी दादियों आदि ने इस प्रकार से पुरुषार्थ किया, इस प्रकार से भविष्य का धरोहर, भविष्य का हमारे हाथों में है, हमारा भविष्य हमारे हाथों में है, और इस प्रकार से यह विश्वविद्यालय का भी भविष्य हमारे हाथों में है। मार्गदर्शन देने वाली दादियां है, बाबा है, वो अलग बात है, परंतु पुरुषार्थ में प्रैक्टिकल फील्ड में तो हम ही रहेंगे ना, तो हमें इस प्रकार से पुरुषार्थ करना पड़ेगा कि हमारे हाथों में भविष्य, हमारे हाथों में यह विश्वविद्यालय का भविष्य का कारोबार आ जाए, तो क्या हम श्रेष्ठ रूप में, श्रेष्ठ से श्रेष्ठ रूप में जैसे हमारी दादियों और बड़े भाइयों ने पुरुषार्थ करके यह विश्वविद्यालय का नाम देश विदेश में प्रसिद्ध किया, इस प्रकार से आगे का भविष्य का कारोबार जो है हमारे हाथों में अगर आ जाए, और आएगा ही सही, हम सब में यहाँ में कोई न कोई यहाँ बैठे हुए होंगे और जो भविष्य का कारोबार के लिए निमित्त बनेंगे और विश्वविद्यालय निर्विघ्न के रूप में चलाएंगे, तो हमें अपने आप को नक्की करना है कि हम इतने लायक बने हुए हैं। ये बहुत फंडामेंटल प्रश्न है कि हम इतने लायक बने हुए हैं कि हमारे हाथों में अगर ये विश्वविद्यालय का भविष्य का कारोबार आ जाए, तो जैसे हमारी दादियों ने, दादी प्रकाशमणि आदि जो भी है, दीदी मनमोहिनी, हमारे दादा विश्व किशोर, जगदीश भाई आदि आदि, दादी ब्रिजेंद्र, दादी पुष्पशांत आदि, जिन्होंने भी पुरुषार्थ किया, इन्होंने जितना त्याग किया, तपश्चर्या किया, इतना हम तपश्चर्या और पुरुषार्थ करके यह विश्वविद्यालय का इतना ही उज्ज्वल श्रेष्ठ हम भविष्य बना सकते हैं। हमारे ही हाथों में यह विश्वविद्यालय का भविष्य, और इसके आधार पर ही हमारे हाथों में विश्व का भविष्य के विद्या विश्वविद्यालय के का हो या तो भविष्य का दुनिया का कारोबार हमारे हाथों में रहेंगे। आर वी कॉन्शियस ऑफ अवर रिस्पॉन्सिबिलिटीज, हमारा हाथों में जो भी बाबा ने जो जिम्मेदारी दी हुई है, इस जिम्मेदारी को अच्छे में अच्छे रीति से निभाने के लिए क्या हम तैयार है, हम तत्पर है? कल उठ करके हमारे हाथ में आ जावे नई दुनिया का कारोबार, तो क्या कर सकते हैं, क्या होगा? अचानक हो सकता है, दादी प्रकाशमणि के जीवन में क्या हो गया, 18 जनवरी रात को 8:15 के बाद बाबा क्लास में से अपने कमरे में गए, दादी जी संतरी दादी और संदेशी दादी तीन बैठे हुए थे, और तीन दादी प्रकाशमणि के हाथ में हाथ रख करके बाबा ने कहा कि मैं तो शायद बाबा के पास जा रहा हूं, ऐसा कह करके बाबा के पास वो तो चले गए, और कितना अचानक कैसा सुंदर बन गया कारोबार, और फिर दादी जी ने वो कारोबार उठाया, आगे बढ़ाया, हम तो साक्षी हैं, हमने साक्षी होकर के देखा था। फिर दादी प्रकाशमणि जो गांधीवी सेंटर वो 63 से 64 से जो थी 18 जनवरी 69 तक, वो दादी प्रकाशमणि कहाँ थी और यज्ञ की मुख्य संचालिका बन गई, उसके बाद क्या था, हमने जमीन आसमान का उनके जीवन के अंदर व्यवहार के अंदर देखा। एक छोटा सा एग्जाम्पल बताऊं, बाबा ब्रह्मा बाबा अव्यक्त हो गए, तो हमारे यहाँ एक मिलिट्री के अंदर एक फोटोग्राफर था, मिलिट्री के अंदर एक फोटोग्राफर था, वो फोटो निकालता था, तो उसने आकर के सबका फोटो निकाला, सबने अपने ब्रह्मा बाबा को अपने किसी ने क्या कहते हैं अपनी गोद में लिया, किसी ने कैसे लिया, इस प्रकार से अलग अलग तरीके से फोटो निकालवाए, ब्रह्मा बाबा की बॉडी डेड बॉडी थी उसके साथ फोटो निकालवाए, तो फिर क्या हुआ, उसने कम से कम 50 रोल खत्म किए, 50 रोल माना 12 नेगेटिव होती है एक रोल में, तो इस प्रकार से इतने लोगों का फोटो निकाला। उसके बाद उसके जीवन में माया आ गई, वो सरदार जी के जीवन में माया आ गई। तो माया आ गई तो उसने क्या कहा, दो नेगेटिव बना करके बोले आया और कहा कि मुझे एक कोई संस्था वाले जो है आपके ब्रह्मा बाबा के साथ के फोटोग्राफ जो है उसके उसको अपने मैगजीन में और अपने अखबार में छपवाना है, मुझे 50,000 दे रहे हैं, आप मुझे 50,000 दो तो मैं आपको फोटो दे दूं, नहीं तो उनको दे दूं। तो दादी जी ने मुझे बुलाया, मेरे को कहा कि रमेश ये ऐसा करता है सन्यास सरदार क्या करे। मैंने कहा दादी इसके साथ केस कोर्ट में केस करने से कोई फायदा नहीं है, तो कोर्ट में जाए, हम कोर्ट में जाए उसके पहले और भी कोई संस्था वालों को दे दे, भले वो झूठ बोलता है, हम जानते हैं कोई इस पर 50,000 देने वाले नहीं है, परंतु फिर भी अगर हो गया तो इसके लिए कोर्ट का केस करनी जरूरत है। आप बहनों के अंदर, आप दादी आपके अंदर वो खूबी है तो सामने वालों को भाई भाई कर करके उसके अंदर उनके हृदय जो है पत्थर जैसा हो गया उसको पानी कर करके मुलायम कर करके उनके द्वारा बात करो। तो दादी ने कहा ठीक है। फिर उसके साथ मेरे पास वो सरदार आया तो 50,000 का क्या किया, मैंने कहा आप दादी से बैठो बात करो। दादी ने उसके साथ इतनी सुंदर बात किया कि उन्होंने सब फोटोग्राफ दे दिए। तो दादी ने मुझे बाद में वो गया इसके बाद दिखा कि ये फोटोग्राफ ले लो। मैंने कहा दादी ये तो आधा काम हुआ। क्यों, दादी ने कहा, मैंने कहा उसके नेगेटिव तो उसके पास है, नेगेटिव आप जानते हैं पहले जमाने में नेगेटिव पॉजिटिव होता था। मैंने कहा नेगेटिव तो उसके पास है तो वो तो हैरान कर सकता है। तो फिर हमने दोबारा उसको फोन किया, बोला दादी याद करती है, तो दोबारा आया। फिर दादी जी ने उसके साथ प्यार से कर करके 50 रोल की जो नेगेटिव जो थी वो सारी ले लिया। तब हमने देखा कि जो गांधी कुमार का दादी त्याग तपस्वीपुर की जो दादी जो थी गांधीदेव में थी और यहाँ थी, उसके बीच में जमीन आसमान का फर्क है। हमने तो दादी जी को पटना सेवा केंद्र के इंचार्ज भी देखा हुआ था, फिर गांधीदेव में आया तो उसका भी इंचार्ज देखा और यज्ञ के कारोबार के अंदर भी निमित्त बनकर के यज्ञ का कारोबार कहा। और साथ में 77 में 4.5 मास दादी जी के साथ वर्ल्ड टूर भी करने का सौभाग्य मिला और उसके बाद 2 मास भारत के अंदर भी सभी सेवा केंद्रों का, इस प्रकार से 4.5 मास का टूर का प्रोग्राम बनाया। और इस प्रकार से दादी जी से कई प्रकार की शिक्षा कहो, कई प्रकार की मार्गदर्शन की बातें कहो सीखने को मिली। तो इस प्रकार से हमारा जीवन जो है, हम सबका जीवन जो है इस प्रकार से, जैसे बाबा मैंने कहा ना आपको ज्ञान सितारों की जो रिमझिम जो है वो बाबा ऊपर से बैठ करके देख रहा है, मम्मा भी देख रही है। तो हम सब नक्की करें कि हमारी हम ज्ञान सितारों की रिमझिम इतनी श्रेष्ठ हो कि बाबा निश्चिंत होकर के कहे कि नहीं बच्चे मेरे लायक हो गए हैं और बच्चों के हाथ में विश्व का कारोबार देख करके मैं निवृत्त हो सकता हूँ। तो इस प्रकार से सोचिए इसके आधार पर। मैंने आपको कहा था कि मैं 6:30 तक क्लास कराऊंगा और उसके बाद आधा घंटा जो है कईयों के प्रश्न होंगे, क्योंकि गृहस्थ जीवन की बातें हैं, मैं भी गृहस्थ जीवन व्यतीत किया हुआ है, अभी भी कर रहा हूँ, अभी भी मैं ऑफिस में जाता हूँ, सब कुछ करता हूँ। तो उसी के आधार पर आप में से किसी को भी प्रश्न हो तो भाई साहब या किसी को माइक दे देना, जो को आकर के माइक पर बोले प्रश्न पूछे तो आपका प्रश्नों का जवाब हम दे सकते हैं। तो इसके आधार पर क्या होगा, प्रैक्टिकल रियलिटीज जो है, प्रैक्टिकल बातें जो है, आप सब हम सब अपने गृहस्थ व्यवहार में अनुभव करते हैं, उसका सामना कैसे करना चाहिए, उसके लिए कैसे हमको मार्गदर्शन मिले, जैसे मार्गदर्शन मुझे मिला इस प्रकार से आप सबको भी मिल सकता है, इसका पुरुषार्थ करना चाहिए। इसके लिए हमने आपको कहा कि आधा घंटा हम इसके लिए रख रहे हैं, क्योंकि प्रैक्टिकल रियलिटीज जो है वो आपके प्रश्नों के द्वारा मालूम पड़ेगा कि वास्तव में रियलिटीज क्या है। और रियलिटीज के आधार पर हम थियोरी में रहने से क्या होगा, कुछ नहीं होगा, प्रैक्टिकल में जीवन भी बनाना पड़ेगा। और ऐसा जीवन, गायन योग्य जीवन, पूजन योग्य जीवन, गायन और पूजन योग्य जीवन हमें अपना बनाना होगा, ताकि हम सत्यु की आदि से इस सृष्टि रूपी रंगमंच पर आ सके। तो इसलिए सोचना इसके ऊपर, तो इसलिए जिनको भी प्रश्न पूछना, शॉर्ट में प्रश्न पूछे, ऐसा न हो कि आपका प्रश्न ही प्रवचन हो जाए।
भ्राता जी, त्रेसठ जन्मों की पाप भस्म हुए तो बाबा मिलते बोले कि
वैसा भी आपको रिपीट करना पड़ेगा क्योंकि यहाँ का माइक जो इतना अच्छा नहीं है।
त्रेसठ जन्म के पाप भस्म हुए तो भक्ति का फल ज्ञान मिलते फिर 20 साल का सर्विस है फिर उसको
कुछ करने में नहीं आता है। आप आगे आग्रह के बोल दिए तो क्या
बाबा ने कही था
या तो आप रिपीट करो यहाँ की जो यहाँ क्योंकि इको ना आवे ना इसलिए यहाँ का माइक जो है ना लाउड स्पीकर जो है बराबर छोटे आवाज में रखा हुआ है इसलिए सुनने में नहीं आता है।
भ्राता जी त्रेसठ जन्म भक्ति करे तो बाबा मिलते पर क्या आपने पापा भस्म हो गए कि फिर हो क्या
नहीं समझ में नहीं आता है। आप बताओ ना भाई साहब इधर उनको सुन लो कि हमको आके बताओ इधर
भाई जी लौकिक जीवन में जब हम गृहस्थियों को दुनिया में लौकिक कारोबार करना पड़ता है तो उस समय पर जो हम चाहते हैं और बनना चाहते हैं जो आपने लक्ष्य दिया है और बहुत सीधा आपने इतना अच्छा हमें बताया तो हम ये पूछना चाह रहे हैं सिर्फ कि उस स्थिति में जैसे आपने बताया कि दादी जी ने तो उनसे वो बात करके उनके अंदर वो गुण थे उन्होंने बात करके वो उनसे 50 निगेटिव ले लिए लेकिन हम अपने जीवन के लक्ष्यों को इस भ्रष्टाचारी समाज में कैसे ले पाए इसके ऊपर जरा थोड़ा सा बताएंगे तो बहुत भला हो जाएगा।
ये तो बहुत सिंपल बात है हमारे हाथों में है हम समझते हैं कि हम कैसे हम गृहस्थी है पहले तो ये गृहस्थी समझते ही सब उसको समझना पड़ेगा। गृहे तिष्ठति इति गृह गृहस्थी घर में जो रहता है उसको गृहस्थी कहते हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि हम बंधन में बंधे हुए इस प्रकार से नहीं है वास्तव में हमारे हाथों में है कि हमारा गृहस्थ व्यवहार हम कैसे चलावे और ऐसा चलावे कि हम जैसे आप जानते हैं शास्त्रों में भी गाया हुआ है जनक राजा वो राजा भी था परंतु जनक राजा विदेही के रूप में कारोबार करता था और उसके कारण राजा होते हुए भी विदेही के रूप में राज्य कारोबार करते हुए भी विदेही के रूप में चला आया करता रहा। इस प्रकार से विदेही के रूप में हो सकता है आज की दुनिया में भी ये हो सकता है। मैंने कई बार हमारी दादी पुष्प शांता का एग्जाम्पल दिया हुआ है। दादी पुष्प शांता शादी शुदा थी 6 बच्चों की माँ थी। आज के दुनिया में तो 6 बच्चों को पैदा करके संभालना उसको बड़ा करना बहुत खर्चा होता है और जापान में योकोहामा में रहते थे दादी पुष्प शांता और उसका पति की आमदनी इतनी अच्छी थी कि 6 बच्चों के लिए 6 बच्चों को संभालने के लिए 6 आयाएं रखी हुई थी। दुनिया में एक आया रखना एक घर का कारोबार करने वाला वो भी बहुत महंगा पड़ता है तो 6 बच्चों की पालना के लिए 6 आयाएं रखी हुई थी इतना सुंदर इतना बड़ा कारोबार था परंतु जब बाबा के बने तो क्या हो गया हमारा भविष्य हमारे हाथों में इस प्रकार से दादी पुष्प शांता ने नक्की किया मुझे मेरा भविष्य बनाना है और इसके कारण क्या हुआ उसने जंप लगाया और एक बाबा की बात है कि आप अपना जीवन का कारोबार जो है अपनी जिम्मेदारी की टोकरी जो है अपने सिर पर न रखते हुए बाबा के सिर पर रख दो तो क्या हो जाएगा बाबा बहुत ही अच्छी रीत से कारोबार संभाल सकता है और इस प्रकार से बाबा अच्छे में अच्छी मदद कर सकता है और इसके आधार पर जीवन हमारा सफल हो सकता है। बात हमारे में है हमारा निश्चय कहाँ तक है बाबा के ऊपर और अपने आप के ऊपर अपने ऊपर। मैं भी ये ज्ञान में आया हाँ तो आप जैसे ही मैंने भी दादी ज्यादातर मोहिनी हमारी टीचर थी बॉम्बे में उनको हमने कहा कि दादी जी मैं बहुत व्यस्त रहता हूँ मेरे पास इतना कारोबार दुनिया का है मेरी ऑफिस है 2 कॉलेज में मैं प्रोफेसर हूँ ये सब है मैं हफ्ते में 1 मास में 1.5 घंटा 1 घंटा सेंटर पर आ सकता हूँ। तो दादी रतन मोहिनी ने कहा कि आपके हाथों में है आप जितना एडजस्ट कर सकते इतना करिए और इसके आधार पर क्या हुआ आज मैं 90% जो है 95% यज्ञ का कारोबार के लिए जीवन व्यतीत करता हूँ तो भी मेरा लौकिक कारोबार चलता है। जो पहले मैं समझता था कि मेरे आधार पर ही मेरा जीवन व्यवहार मेरा परिवार का जीवन व्यवहार चलता है ऐसा नहीं है बाबा के भरोसे छोड़ देते हैं मैं यहाँ बैठा हुआ हूँ तो भी हमारी ऑफिस का कारोबार निर्विघ्न रूप में चलता है, क्योंकि मेरी ऑफिस में मेरे बाबा जो है मेरा कारोबार ज्यादा अच्छी रीत से चलाते हैं। तो इसलिए हमारे हाथों में है कि हमारा भविष्य के लिए हमको क्या करना चाहिए। हम ये ना समझे कि हमारा बस ये जिम्मेदारी है, ये जिम्मेदारी, ये जिम्मेदारी। हमारी जिम्मेदारी नहीं बन, बाबा की जिम्मेदारी। बाबा को कहो, बाबा कैसे आप मददगार बन सकते हैं। तो इस प्रकार से करेंगे तो कोई कठिन बात नहीं है। मेरा अपना भी अनुभव है, हमारे दादी पुष्प शांता के ऐसे बहुतों का अनुभव इस प्रकार से।
भाई जी, मैं ये पूछना चाहता हूं, कल दादी जी ने मनसा सेवा के ऊपर बहुत जोर दिया, तो घर गृहस्थ में रहते हुए हम मनसा सेवा को कैसे बढ़ाए, इसकी विधि क्या है?
ये तो टॉपिक बहुत सिंपल है, क्योंकि हमारे स्पार्क के अंदर मनसा सेवा के बारे में एक किताब बनी हुई, एक साल प्रोजेक्ट बनाया था स्पार्क के द्वारा, और उसके द्वारा हमारी इंदिरा बहन जो है उसने किताब भी छपवाई थी, और उसके आधार पर मनसा टॉपिक का उसके ऊपर तो काफी बातें हो चुकी है। तो इसके लिए बाबा दादी जी ने भी कल जो मनसा सेवा कहा वो सहल का, कठिन में कठिन भी वही है और आसान में आसान भी मनसा सेवा ही है। हमारे हाथों में हम कैसे सेवा कर सकते और कैसे मनसा सेवा करेंगे, क्योंकि आखिर के विनाश के समय पर मनसा सेवा ही कारोबार में आएंगे। बाकी ये प्रदर्शनी है, ये कॉन्फ्रेंस है, ये सब कारोबार नहीं हो सकता है। तो मनसा सेवा की वो किताब आप पढ़ लीजिए, सारी किताब अच्छी, बहुत अच्छी बनी हुई है। वो उसकी रिवाइज एडिशन नहीं हुई है, क्योंकि उसके बाद हम बाबा ने कई बातें जो नई कही हुई है तो वो उसमें हम डालना चाहते हैं। अब हमारी स्पार्क की मीटिंग है, कॉन्फ्रेंस है, उसके अंदर इसके ऊपर चर्चा करेंगे और मनसा सेवा की किताब को हम रिवाइज करके सबके सामने रखेंगे, तो आप सबको मैं समझता हूँ अगले मार्च तक वो मिल जाएगी। तो मनसा सेवा का जो कल दादी जी ने कहा होना चाहिए, तो इस प्रकार से हो सकता है, कोई कठिन बात नहीं है। हमारे हाथों में कोई भी बात जो है, जैसे जानकी दादी ने एक क्लास कराया था, हमारे हाथों में कोई छोटी बात को बड़ी करना और बड़ी बात को छोटी करना, इस प्रकार से मैंने उसमें एडिशन किया हुआ है कि हमारे हाथों में कोई भी बात को बड़ी समस्या करना, या कोई समस्या बड़ी भी आती तो उसमें क्या बड़ी बात है, ऐसा कर करके हमारा मेंटल एटीट्यूड जो है, रिफ्लेक्शन जो है, हमारी मान्यताएं जो भी है, हमारा दृढ़ निश्चय जो भी है, उसके आधार पर हमारा भविष्य बन सकता है, हमारा पुरुषार्थ बन सकता है। हम छोटी बात को बड़ी समझे तो पुरुषार्थ नहीं कर सकेंगे, और हम नक्की करेंगे ये तो बड़ी बात है, उसमें क्या हो गया, इसमें तो ऐसा होता है, चलता रहता है, तो उस प्रकार से करेंगे तो भी हो सकता है। हमारे हाथों में है, इसलिए हमने कहा ना, बाबा ने कहा कि आपका भविष्य आपके हाथों में है। हमारी सामने समस्या इतनी बड़ी है, इतनी गंभीर है कि सारे कल्प के अंदर का इतिहास जो है उसके अंदर हम अपना पार्ट श्रेष्ठ बनाने के बदले में साधारण बन जाए, विश्व महाराजा के बदले में रॉयल फैमिली का बन जावे, या तो साहूकार बन जावे, या तो प्रजा बन जावे। भविष्य का जो हमारा पार्ट है, चाहे प्रजा का, चाहे साहूकार का, चाहे रॉयल फैमिली का, चाहे राजा का, चाहे महाराजा का, चाहे विश्व महाराजा, ये हमारे हाथों में है। हमारा भविष्य हमारे हाथों में, इसकी अगर हमारे में जागृति आ जावे, ये चेतना आ जावे ना, तो कोई बात समस्या के रूप में हमारे सामने नहीं रह सकती है, मैं आपको विश्वास से कह सकता हूं।
ओम शांति। कल गुलजार
आप माइक को सीधा सामने रखो।
कल गुलजार दादी के शरीर में प्रकाशमणि दादी जी आई थी। प्रकाशमणि दादी जी का ऑलरेडी जन्म हो चुका है, तो एक शरीर में जब उन्होंने प्रवेश कर लिया है
क्या,
तो
नहीं भाई, नहीं समझ में आता है।
कल गुलजार दादी के शरीर में प्रकाशमणि दादी जी आई थी, तो जब उन्होंने ऑलरेडी एक जन्म ले लिया है कहीं पे, तो वो प्रकाशमणि दादी जी का शरीर में आना, इस पे प्रकाश डालेंगे आप?
यही तो बात है, जब तक हमने ब्रह्मा बाबा को इस प्रकार से देखा हुआ है, हमारे इस प्रकार से हमारे ज्ञान को अगर समझ ले, परमात्मा की शक्तियों को समझ ले, तो फिर ये प्रश्न नहीं हो सकता है कि बाबा जो है मैजिशियन भी है, सर्वशक्तिवान भी है, और सर्वशक्तिवान इसके कारण जिस प्रकार से कई बातों को इमर्ज करना होता है, इस प्रकार से इमर्ज कर करके हमको कारोबार दे सिखा दे सकता है, इसलिए ये कोई प्रश्न नहीं है। हमारे मन में हमने समझा नहीं है बाबा को, बाबा की शक्ति है। इसलिए तो बाबा मुरली में कहता है मैं जो हूँ जैसा हूँ ऐसा बहुत कम बच्चों ने मुझे समझा है। अगर आप उसको समझ लो हाँ तो ये प्रश्न नहीं हो सकता है।
हेलो
हेलो
हेलो भाई साहब, एक भाई जी का प्रश्न आया है, सभी वरिष्ठ भाइयों से हमारा पुरुषार्थ कम है ऐसा उनका कहना है, तो ऐसे बहुत सारे भाइयों के मन में भी ये प्रश्न आ रहा होगा, बहुत अच्छा प्रश्न है ये कि पुरुषार्थ कम है से समय सेवा भी कम है अनुभव भी कम है, तब हम कैसे हाई जंप के साथ साथ लॉन्ग जंप लगा सकते हैं, कैसे खुद समझें और लोगों को समझाएं, ये ऐसा प्रश्न किया है।
लेकिन क्या बताया जरा बताओ है। आप बताओ तो इनके।
जी भाई जी, कल तो बाबा ने
कल बाबा ने नहीं दादी ने कहा था वो आप
कल दादी जी ने बताया था कि समय बहुत खराब हो गया है और इस समय पर मनसा सेवा की आवश्यकता है। अगर हम मनसा
अगर आप आज के रोज के अखबार पढ़ो तो आपको मालूम पड़ेगा दुनिया कहाँ जा रही है। रोज रेप शादी आदि जो कारोबार जो है आधा अखबार तो उनसे ही भरा हुआ होता है।
जी भाई साहब,
तो इस प्रकार से अति की तरफ जा रहे हैं। आपको समझ में आता है या नहीं?
बिल्कुल।
दादी जी ने कुछ भी कहा, आपको अपना जीवन व्यवहार क्या लगता है, आज से 50 साल पहले कैसा जीवन था और आज कैसा है और उसके आधार पर हम कहाँ जा रहे हैं।
बिल्कुल।
चाहे पॉलिटिकली चाहे इकोनॉमिकली जो भी है, एक इकोनॉमिकली आपको बताऊं, जब हिंदुस्तान आजाद हुआ तो एक रुपया बराबर एक डॉलर था और 1916 में एक रुपया बराबर 16 अमेरिकन डॉलर थे, एक रुपया बराबर 16 अमेरिकन डॉलर थे। आज क्या हो गया, हिंदुस्तान आजाद हुआ तो एक रुपया बराबर एक डॉलर था, 1960 में एक डॉलर बराबर 2.5 रुपया था और आज 2013 में क्या है, आज का लेटेस्ट भाव बताऊं आपको 64 रुपीज 19 पैसा है। तो इस प्रकार से इकोनॉमी डाउन होती रहती है ना, जाती रहती है, हम अनुभव करते हैं। इसमें दादी कहे ना कहे तो क्या है, हम अपने अनुभव से नहीं कह सकते। इकोनॉमिकली सोशली सब प्रकार की बातों में क्या होता है, हिंदुस्तान के कोर्ट के अंदर 3 करोड़ केसेस पेंडिंग है, इससे क्या हो सकता है, इतना कभी होता था पहले? इसलिए तो शास्त्र में हुआ है न दंडो न दांडी का धर्म ने हुई प्रजा परस्परम, न दंड था न दंड देने वाले थे, धर्म के आधार पर ही हर एक व्यक्ति अपने जीवन का व्यवहार करते थे। इस प्रकार का श्रेष्ठ जीवन सतयुग का जीवन था, उसके बारे में शास्त्रों ने ऐसा कहा। और आज की दुनिया में देखो 3 करोड़ सेवा का केसेस पेंडिंग है, इसके आधार पर अधोगति की तरफ जा रही हकीकत है। हिंदी में कहावत है कि हाथ कंगन को आरसी की जरूरत नहीं है। इस प्रकार से दुनिया की गति अधोगति की तरफ जा रही है, उसको दादी क्या हम सब भी अनुभव कर सकते हैं, दादी ने तो रिमाइंड कराया।
जी धन्यवाद।
भाई जी, हम माताओं की बहुत बड़ी इच्छा रहती है बाबा के कार्यों में मदद करे, लेकिन किसी वजह से धन की वजह से कार्य में मदद कर नहीं सकते, तो क्या करें?
आप रिपीट करो भाई।
माताओं की बहुत इच्छा रहती है तो अपन बाबा के कार्य में सहकार्य करे, ऐसा मदद करे, लेकिन धन की वजह से कुछ कारणों की वजह से हम माताएं कर नहीं सकती, तो क्या करना चाहिए?
ये क्या कहते हैं, समझ में नहीं आया। ये आप रिपीट करो ना, आप भाई साहब इधर आ जाओ, क्या बोला उसने?
बहन जी बोलती है माताएं बाबा के कार्य में मदद करना चाहते हैं, लेकिन धन की वजह से या कानून की वजह से हम मदद नहीं कर पा रहे हैं, हम क्या कर सकते हैं, पूछ रही है।
ऐसी कोई बात नहीं है। बाबा मम्मा ने हमारे घर में बैठ रहे थे तो मम्मा ने एक बात कही, बाबा का सोशलिज्म, बाबा का समाजवाद, बाबा का समाजवाद इतना श्रेष्ठ है, इतना श्रेष्ठ है कि बाबा सबको आगे बढ़ने के लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटीज देते हैं सबके जीवन में. आप भी अपने जीवन में देखो, यहाँ जितने भी बैठे हुए सबके जीवन में गोल्डन अपॉर्चुनिटीज आगे बढ़ने की आई हुई है. परंतु क्या होता है, हमारे गुजराती में कहावत है कि लक्ष्मी तिलक करने को आती है ना, तो हम मुख धुलाई करने को जाते हैं. इस प्रकार से आई हुई गोल्डन अपॉर्चुनिटीज जो है वो मिस करते हैं, हकीकत है. बाकी ये प्रश्न होता ही नहीं है, सबके जीवन में इस प्रकार से हो सकता है. कैसे करो कारोबार करो, हमने हमारे लौकिक माता का जीवन की देखा ना, घर में रहती थी, माता का जीवन था, सबके होते हुए भी इतना कारोबार कर दिया कि जब बाबा ने ट्रस्ट बनाया तो पहले उसको ट्रस्टी बनाया. तो इस प्रकार से सबके जीवन में ऐसा अपॉर्चुनिटीज आती है, गोल्डन अपॉर्चुनिटीज. बट सिद्धांत ये है कि गोल्डन अपॉर्चुनिटीज डू नॉट रिपीट, ये दोबारा नहीं आती. एक बार गई वो अपॉर्चुनिटी गई. तो इसलिए आप अपने जीवन के अंदर अपना इंट्रोस्पेक्शन करके देखो कि हमारे पास इतनी अपॉर्चुनिटीज आई, हमने क्या मिस किया और क्या पाया. उसके आधार पर करेंगे तो क्या हो जाएगा. वैसे माता है तो क्या हो गया, माता के आधार पर घटना से श्रेष्ठ पद प्राप्त कर सकते. मैंने कहा दादी पुष्प शांता, दादी विजेंद्रा दो बच्चों की माँ थी. ऐसा सब कुछ होते हुए भी कितना सुंदर जीवन व्यवहार उन्होंने करके दिखाया. इसलिए ऐसी कोई बात नहीं है, हमारे हाथों में है. हमारे हाथ में नमक नौ में मुक्ति बंधा है, गीता में भी कहा हुआ है, शंकराचार्य ने भी कहा है, हमारे हाथ में मुक्ति और बंधन हमारे हाथों में. हम ही अपने हाथों पर हाथ पांव में बंधन बना सकते हैं और हम ही अपने हाथ पांव के अंदर जो बंधन है उसके हम निर्बंधन हो सकते हैं. हमारे हाथों में है.
ओम शांति भाई साहब, हम सर्विसेबल पर्सन है, सर्विस करते हैं तो हमारी जो इनकम है वो बंधी हुई है. अब हम लोग ये चाहते हैं कि बाबा की आज्ञा में हम मैक्सिमम कर, हम मैक्सिमम करें, धन का सहयोग मैक्सिमम करें, लेकिन आवक बंधी हुई है तो उसको हम किस तरह से.
नहीं, नहीं, समझ में नहीं आता है. आप बताओ भाई साहब, आप रिपीट करो ना.
ओम शांति. ये भाई साहब पूछ रहे हैं, हम सर्विस करते हैं, बाबा को मैक्सिमम धन की सेवा करना चाहते हैं, लेकिन हम सर्विस करने के कारण हमारा धन सीमित है. हम मैक्सिमम बाबा के सेवा में धन कैसा यूज करें, उसका मैनेजमेंट कैसा करें, धन का पूछ रहे हैं.
भाई साहब ये कह रहे हैं कि हम बाबा की सेवा धन से करना चाहते हैं और ठीक से अच्छे से करें, लेकिन हमारे लिमिटेड है मानसिक, तो हम कैसे फिर सेवा करें.
धन के सेवा करने के लिए अनेक साधन है, सेवा करने के लिए अनेक साधन है. सिर्फ धन नहीं, तन भी है, मन भी है, धन भी है, सब इस प्रकार से आगे बढ़ सकते हैं. हमारे जीवन के अंदर मैं यहाँ का अनुभव सुनाऊ, हमारे बनारसी भाई और रामश्लोक भाई, वो वहाँ के होम्योपैथिक कॉलेज या जो भी आयुर्वेदिक कॉलेज मुजफ्फरपुर की जो कॉलेज में से पास होकर के यहाँ डॉक्टर बनकर के आए. वो यहाँ आए तो क्या हुआ, हम क्या करते, सिलेक्ट करते, हमको ये काम तो हम नहीं कर सकते, हमारी पोजीशन से कम पड़ जाता है, इस प्रकार से कर करके हम छोड़ देते. और बनारसी भाई और रामश्लोक भाई यहाँ आए तो किचन से ही अंदर आए और किचन का सेवा करते करते आगे बढ़ते बढ़ते आज बनारसी भाई कितना सुंदर काम करते, रामश्लोक भाई कितना सुंदर काम करते. मैं कुछ खुद मुझे मालूम है, मैं रामश्लोक भाई के पास गया था तो मेरे को कुछ बीमारी थी तो कहते अब अभी पांच मिनट में आओ जा करके आते थे. तो मैंने उनको आखिर पूछा कि आप घड़ी घड़ी जाते हो क्या करते, तो कहा मैंने जो सिगड़ी होती है ना, सिगड़ी के ऊपर सब्जी रखी हुई तो उसको हिला करके आता हूँ, ऐसा ना वो जल जावे. तो इसलिए सिगड़ी पर रखी हुई सब्जी जल नहीं जावे वो भी ध्यान रखते थे और आकर के हमारे से बात भी करते. तो हमारे हाथों में है, हम क्या करते, सिलेक्टिव बन जाते. ये सिलेक्टिव नहीं बनना चाहिए, जो भी मिले, जो भी समस्या. हमारे बॉम्बे का एक भाई करोड़पति था, वो यहाँ आया सेवा करने के 15 दिन के लिए, तीनों को वहाँ पर ऊपर पहरे की ड्यूटी दे दिया. और निर्वय भाई आदि जो भी है, जिस प्रकार से किसको बुलावे क्या करे, कोई नया आता है उनसे मिलता है. तो मैंने उनको देखा तो मैंने कहा अरे भाई आप तो करोड़पति हो, आपको ऐसी सेवा कैसे दिया गया, आप क्यों ऐसे बात करते हो. कहा नहीं रमेश भाई, इनसे बढ़िया और कोई सेवा ही नहीं है. मैंने कहा क्यों, क्या बॉम्बे में तो ऑफिस में बैठे रहते थे, इसके कारण क्या होता था, गैस होता था, ये होता था, ये होता था। मैं यहाँ 10 दिन से हूँ, 15 दिन के लिए आया हूँ, 10 दिन में मेरी सब सब समस्याएं जो है वो दूर हो गई है। ऐसे ही दूसरा हमारा एक चार्टर्ड अकाउंटेंट भाई था, उसको धोबी घाट में सटका लगाने, कपड़े का सटका लगाने, पहले तो मशीन नहीं था धोबी का, वो उसके द्वारा करता था। तो मैंने उनको कहा, अरे तुम तो चार्टर्ड अकाउंटेंट, इतना सुंदर बड़ी कंपनी का अकाउंटेंट है। तो कहा, रमेश भाई सटका लगाने का इनसे अच्छा और कोई सेवा ही नहीं है। मैंने कहा क्यों, तो कहा कि मैं सटका लगाता हूँ, सेवा करता हूँ, तो मेरी तबीयत अच्छी हो गई। तो इस प्रकार से बाबा जो भी मिले, इसलिए भक्ति मार्ग में यही गीत है, जिस रंग में परमात्मा राखे उसी रंग में रहियो जी, उसी रंग में रहियो, इस प्रकार से भक्ति मार्ग का भी एक भजन है। तो बाबा जो भी अपॉर्चुनिटी मिले उसको स्वीकार करके उसके द्वारा आगे बढ़ने का प्रयत्न करना चाहिए।
ओम शांति। भाई जी मेरा एक प्रश्न है, कुछ लोग चाहते हैं कि हम सेवा करें या तुम्हें कुछ खर्च करें।
और लोगों की बातों में नहीं जाइए, आप अपनी बात करो, कुछ लोगों की बात
नहीं, हम अपने रिलेशन की बात कर रहे हैं।
आप अपनी बात करो, आपने कहा कुछ लोगों की बात,
कुछ मना रिलेशन में है ऐसे,
ऐसा नहीं करो। औरों के नाम पर अपनी बातें नहीं करो, अपना अपना करो। मैं हमेशा ये मानता हूँ, हम औरों की बात में क्यों जा रहे।
नहीं, हम ही अपने घर की बात कर रहे हैं कि हम अगर यज्ञ में कुछ करना चाहें, बड़ी सेवा करना चाहें, तो घर वालों का कहना है कि उसमें नाम मान शान थोड़ा मिलना चाहिए, कहीं नाम लिखा हो या कहीं अनाउंस हो कि आपने इतनी सेवा की, तो उनको कैसे समझाएं, कैसे सेवा कराएं यज्ञ में, धन की सेवा।
क्या बताओ, आप बताओ।
ये कह रही हैं कि हम यज्ञ में सेवा करना चाहते हैं लेकिन घर वाले हमारे मान शान चाहते हैं, तो फिर हम कैसे सेवा करें। बिल्कुल न्यू न्यू क्वेश्चन कर रहे हैं।
ऐसी कोई बात नहीं है, मैंने आपको कहा ना, हमारे हाथों में है, हमारे हाथों में कोई भी बंधन आ गया। हम भी शुरू में आए, हमने खाना पीना बाहर का बंद कर दिया, काफी मतलब हो गया, तो सब कहते थे ऐसा कैसे होगा, ऐसा कैसे। उषा की माँ ने हमको कहा कि हम हरिजन हैं, हमारे घर का खाना नहीं खाते हो। मैंने कहा हम नक्की किया है, मना नक्की किया है। तो इस प्रकार से अगर आपका दृढ़ संकल्प है तो पत्थर को भी पानी आप कर सकते हो। ऐसी कोई बात, इस दुनिया की कोई ऐसी बात नहीं जो आपके लिए रुकावट डाल सके। हमने रुकावटें निर्माण किया हुआ है और उसके कारण हमारे ही प्रवृत्ति और प्रगति के अंदर रुकावट हम ही निर्माण करते हैं।
परम आदरणीय भाई जी, एक निवेदन है, हमारी शंका जो अभी भाई ने कहा था मुझसे पूर्व में, अभी एक भाई खड़े थे और आपने कहा करण करावनहार बाबा है, ये तो बड़ी अच्छी तरह से आपने कहा कि परमात्मा से ऊपर कोई चीज है नहीं, जो उसको मंजूर है वो होता है। लेकिन आपसे निवेदन ये है कि उसको थोड़ा सा उसका क्लेरिफिकेशन कर दें कि वो आत्मा दादी जी के तन में जैसे आई तो वहां से डिटेच होके आई के साथ दादी जी।
शॉर्ट में प्रश्न पूछो नहीं, आपने
थोड़ा सा निवेदन
किया,
इसको क्लियर कर दें। और मतलब ये
क्या बोलते,
करण करावनहार बाबा है लेकिन जैसे दादी आई तो वो हमें थोड़ा सा क्लियर कर दे, रिफाइन कर दे।
नहीं, हमारे हाथों में, हमने कहा ना, इतनी बाबा की मुरलियां है, रिवाइज मुरलियां है, सब है हमारे पास। इन मुरलियों के आधार पर ही दादी दादी बन गई। ऐसा नहीं है कि दादी ऊपर से बनकर के आई थी, यहाँ ही आकर के उस पुरुषार्थ के आधार पर दादी बन गई। तो इसलिए बाबा के ज्ञान से ही बन सकते, बाबा का ज्ञान, योग, धारणा, सेवा। उस शुरू के दिनों में तो ज्ञान इतना क्लियर भी नहीं था, योग के बारे में भी हम लोग नहीं जानते थे। मैंने खुद ने यहाँ देखा हुआ है कि सुबह 4 बजे उठने की बात ही नहीं थी, और पहली बार जब बाबा ने कहा ना ब्रह्मा बाबा ने 4 बजे उठना है, तो माथुर जी ने बहुत बड़ा ऑब्जेक्शन लिया कि बाबा ये क्या बड़ी बात है, क्या बात है आपने कहते हो, आज तक तो आपने कहा नहीं कि 4 बजे उठने का, अभी आप कहते हो 4 बजे उठने का, ऐसा ऑब्जेक्शन इतना आया। हाँ, इस प्रकार से बातें आती रहती है, नई बातें। अभी तो पुरुषार्थ बहुत सहज हो गया, साधन इतना हो गया है कि बात मत पूछो। इसके कारण पुरुषार्थ के अंदर दिक्कत नहीं हो सकती है, अगर हमारे में दृढ़ संकल्प और दृढ़ बल है तो, दृढ़ मनोबल है तो। अभी 4 मिनट रही हुई है, 7 बजे आप जानते हैं यहाँ योग होगा।
सबसे श्रेष्ठ पुरुषार्थ कौन सा है जिसे हम सतयुग के आदि आदि में आ सके?
इसका सिंपल श्रेष्ठ पुरुषार्थ वही है कि लक्ष्मी नारायण नंबर, सेकंड नंबर तो अनाउंस नहीं हुआ है, श्रेष्ठ पुरुषार्थ ऐसा करेगा हम लक्ष्मी नारायण नंबर सेकंड बन सके, वो सबसे श्रेष्ठ में श्रेष्ठ विश्व के इतिहास के अंदर देखा जाए। हमारे हाथों में, हम क्या बनना चाहे और क्या बन सकते हैं। श्रेष्ठ पुरुषार्थ तो सबको बता दिया है बाबा ने, इसलिए तो कहा है कि पहले नंबर की सीट रिजर्व हो गई है, बाकी सब सीट खाली है। इसलिए आपके हाथों में है, आप क्या बनना चाहते हो? और कोई है इधर? पूरा कर लेंगे क्या? मेरा कहने का मतलब यही है कि हमारा भविष्य हमारे हाथों में है, हम अपना भविष्य श्रेष्ठ में श्रेष्ठ जितना बना सके इतना बना सकते हैं। और साधारण प्रजा का भविष्य तो है ही, क्योंकि बाबा ने कहा है, एक बार जिसने बाबा कहा उसको तो त्रेता युग से ऊपर, मतलब द्वापर के ऊपर त्रेता युग में आने का चांस तो मिलने वाला ही है। तो इसलिए इतना प्रजा का रूप का तो हम सबका रिकॉर्ड रजिस्टर्ड हो गया है, पर तो उनसे आगे का श्रेष्ठ बनेगा साहूकार राजा, प्रजा में से साहूकार, साहूकार से राजा, पीछे महाराजा, रॉयल फैमिली, महाराजा और विश्व महाराजा, वो सब आगे की लिस्ट हमारे सामने है, उसके आधार पर हमको नक्की करना है। आप सब नक्की करें हमको क्या बनना है, और उसके आधार पर हमारा पुरुषार्थ को तीव्र बताइए, बनाइए।